ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
क्यों आवाज कर रहे हैं?
कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुसीदं तुर्जमुच्यते वार्ता चतुर्विधा तत्र वयं गोवृत्तयो निशाम् सत्वं रजस्तम इति स्थित्युत्पत्यंत हेतवः रजसोत्पद्यते विश्वाम् अन्योन्यं विविधं जगत् रजसा चोदिता मेघा वर्षन्त्यम्बूनि सर्वतः रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्रः किं करिष्यति न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न गृहा वयम् नित्यं वनौकशस्तात वनशैल निवासिनः तस्माद् गवां ब्राह्मणानां अद्रेष्टारभ्यतां मखः य इन्द्रजागसंभारः तैरयं साध्यतां मखः पच्यन्तां विविधः पाकः सुपान्तः पायसादयः संयावपूपसस्कुल्यः संयावापूपसस्कुल्यः सर्वदोहश्च गृह्यताम् भूयन्तामग्नयः सम्यक्। आवाज भाई मैं क्यों कर रहा है? ठीक से करो। भूयन्तामग्नयः सम्यक् ब्राह्मणैः ब्रह्मवादिभिः अन्नं बहुविधं तेभ्यो पाठ भेदे रस अन्नं बहुरसं तेभ्यो देयं वो धेनु दक्षिणः अन्येभ्यश्चाश्वचाण्डाला पतितेभ्यो यथार्हतः यवसं च गवां दत्त्वा गिरये दीयतां बलिः स्वलं कृता भुक्तवन्तः सुनु लिप्तः सुवाससः प्रदक्षिणं च कुरुतः गोविप्रानलपर्वताम् एतन्मम् मतं तात क्रियतां यदि रोचते अयम् गो ब्राह्मण अद्रीणाम् मह्यम् च दयितो मखः। श्रीशुक उवाच कालात्मना भगवता, कालात्मना नहीं है मा है, मा नहीं, कालात्मना भगवता शक्र दर्पम जिघांसता, प्रोक्तम निशम्य नन्दाद्यः साध्वगृहिणम् च तद्वचः। कृषि कृषि वाणिज्य व्यापार, गोरक्षा चालू करो, गाय का पालन, कुशीदम सूद लेना, तुर्जम चौथी, उच्यते शास्त्र द्वारा कहा गया है, वार्ता जीविका, चतुर्विधा चार प्रकार की, तत्र इन चारों में वयम हम लोग, गोवृत्तयः गाय की रक्षा द्वारा पालन द्वारा जीते हैं, अनिशम निरंतर, सत्वम सत्व गुण, रजः रजोगुण, तमा तमोगुण, इति ये तीन स्थिति उत्पत्यंत हेतवः। इस विश्व की स्थिति उत्पत्ति और अंत के कारण हैं। रजसा रजोगुण से उत्पद्यते विश्वम विश्व, अन्योन्याम स्त्री पुरुष के संयोग से, विविधां विविध प्रकार, जगत जीवों का समुदाय। गोपों की सभा में भगवान श्री कृष्ण प्रवचन कर रहे हैं, श्री बलराम जी साथ में हैं और नंद बाबा उस सभा में प्रधान हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, फिर भी कम आवाज है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। उस लाउड स्पीकर को भोपू को इंद्र को सुना रहे हैं क्या ऊपर? कैसे हो गया? आवाज इसीलिए हो रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। एक बार लॉस एंजलिस में महाकृष्ण जन्माष्टमी का फेस्टिवल हो रहा था, कई प्रकार के आयोजन थे और कुछ लोगों को बोलना था। उसमें उत्तर भारत के सब लोग थे, साउथ इंडिया के भी थे। मैं देखा, हमको भी उसमें बुलाया गया था बोलने के लिए। पूरा 2 घंटे का प्रोग्राम था, माइक 1 मिनट भी अच्छा से नहीं बोला। मैं कहा कि अमेरिका है, एक से एक लोग एक्सपर्ट हैं, लेकिन माइक को ठीक नहीं कर पाए। ये उस देश की ये हालत है तो ये तो गांव है क्या। हरे कृष्ण तो भगवान श्री कृष्ण श्री बलराम जी के साथ बड़े बूढ़े गोपों की सभा में गए और वहां पर भगवान प्रवचन करने लगे। उस प्रवचन का आशय क्या था? गोपों को इंद्र यज्ञ से निवारित करना, मना करना। प्रतिवर्ष गोप लोग भगवान इंद्र की पूजा के लिए यज्ञ उत्सव करते थे। तो भगवान ने सोचा कि इंद्र को बहुत बड़ा घमंड हो गया है, ये हमारे माता पिता से हमारे स्वजनों से पूजा ले रहा है, इसको तो आकर के चाहिए था स्वयं मना कर दे कि नहीं 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 हमारी पूजा मत कीजिए। लेकिन ऐसा कर नहीं रहा है। तो भगवान प्रवचन करने लगे और पूछे, जैसे कल कथा हुई थी कि पिताजी ये क्या तमाशा होने जा रहा है, कौन सा बड़ा भारी काम है, सब दौड़ धूप कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने कहा कि ये यज्ञ हो रहा है बेटा। तो भगवान ने पूछा कि इसका क्या फल है? कोई भी काम किया जाता है तो फल के लिए, मतलब सिद्धि के लिए, इसका क्या फल है और किसके लिए यज्ञ हो रहा है, किसको प्रसन्न करने के लिए, देवता कौन है और किन किन साधनों से यज्ञ पूरा किया जाएगा। नंद बाबा सब वर्णन किए, इंद्र के लिए यज्ञ हो रहा है और बड़े ही श्रद्धालु भाषा में नंद बाबा ने कहा, बेटा इंद्र भगवान वर्षा करते हैं, उनके वर्षा से गेहूं होता है, चावल होता है, घास होती है और उसे गौवें खाती हैं, तो घास को गौवें खाती हैं तो दूध होता है, दही होता है, सब इन्हीं सब वस्तुओं से भगवान कृष्ण भगवान इंद्र की पूजा करनी है, उन्हीं का दिया हुआ है। द्रव्यस्तर रेतसा सिद्धई, उनके वृष्टि से वर्षा से जो चीजें प्राप्त हैं इन्हीं वस्तुओं से इंद्रदेव की पूजा करनी है। ये हमारे कुल परंपरागत इष्ट देव हैं और हमारे पिताजी ने किया, हमारे दादा ने भी किया होगा, सब परंपरा से ही हो रहा है। कृष्ण ने पूछ दिया कि पिताजी अगर इसे न किया जाए तो क्या होगा? तो नंद बाबा ने कहा कि नहीं करने पर तो अमंगल होगा, मंगल नहीं होगा इसको छोड़ देने से। तब भगवान कहने लगे कि पिताजी हमारी तो ऐसी कम ही उम्र है, 7 वर्ष का हूं, लेकिन मैंने सुना है और ऐसे अनुभव करके देख रहा हूं कि सारे जीव अपने कर्म से पैदा होते हैं, कर्म से मरते हैं, सुख दुख जो भी प्राप्त होता है उनको अपने कर्म से प्राप्त होता है। आज तक मैंने ये नहीं सुना कि इसमें बीच में इंद्र का भी दखल है। इंद्र क्या करते हैं, सब अपने अपने कर्म से जन्म ले रहे हैं। अगर ईश्वर को स्वीकार भी करें कि इंद्र ईश्वर हैं, तो वे तो कर्मों के अनुसार फल देते हैं, अतः वे कर्म के किंकर हैं। अगर कोई आदमी अच्छा कर्म किया है तो अच्छा फल देंगे, और अच्छा नहीं किया है तो अच्छा नहीं देंगे। श्री भगवान इस बात पर आए कि कोई ईश्वर नहीं है, सभी अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, कर्म ही ईश्वर है, कर्म ही गुरु है, कर्म ही मित्र है, ये शत्रु है उदासीन है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कर्म की पूजा करे। कर्म ही देवता है, कर्म ही पूजा है। भगवद गीता में भगवान जो बोले हैं उसके ठीक उल्टा बोल रहे हैं, इसीलिए इस प्रवचन को, इस प्रसंग को कोई उदाहरण में नहीं लेता है। अरे भगवान फालतू बोल रहे हैं, अरे भगवान भी अगर वेद से विरुद्ध बोले तो उनकी बात का कदर नहीं होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, भगवान का मतलब नहीं है कि अटपटांग बोले, भगवान बोल चुके हैं, वेद उनकी वाणी है, शास्त्र उनकी वाणी है, तो उसी के अनुसार वे बोलेंगे। अगर उससे भिन्न बोले तो कोई नहीं पूछेगा। भगवान बुद्ध है, जब उपदेश चालू किए तो वेद का कोटेशन नहीं दे रहे थे। ऐसे उन्होंने यह भी नहीं कहा कि मैं वेद को नहीं मानता, मैं इस विषय में उदासीन और तर्क देकर के जैसे तैसे बातें कहते थे। वेद का उदाहरण नहीं दिए, शास्त्र को नहीं माने, तो इसीलिए वेद निंदत निंदित भय प्रकट बुद्ध होता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, वेद की उपेक्षा करने से भगवान बुद्ध भी उपेक्षित हो गए, कोई नहीं पूछा। श्रीपाद शंकराचार्य के उपदेशों के बाद बौद्ध धर्म लगभग भारत से खत्म ही हो गया, कोई पूछा नहीं, क्योंकि वेद से विरुद्ध बोल रहे थे। तो श्री भगवान बोल रहे हैं, उनका आशय यह था कि ब्रजवासी लोग, गोप लोग इंद्र की पूजा न करें, और यह भी भगवान ने इसलिए किया कि इंद्र का अभिमान तोड़ना था, घमंड तोड़ना था। भगवान सबके हितैषी हैं, और उन्होंने अपने मुख से इंद्र से कहा है कि जो देवता हैं उन्हें तो सत्वगुण में रहना चाहिए, महान विचार होना चाहिए, तुम्हारा अभिमान बढ़ गया था, इसलिए तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए मैं लीला किया। इंद्र जब क्षमा मांग रहे थे तब भगवान ने स्पष्ट कहा है, वो कथा बाद में आएगी। तो भगवान का ये आशय नहीं है कि सारी जनता अब इसी को फॉलो करे, केवल गोपों के लिए वो प्रवचन था, और प्रवचन का सार यह था कि ये लोग इंद्र की पूजा न करें, क्योंकि भगवान के भक्तों द्वारा, खासकर परिकरों के द्वारा इंद्र आराध्य नहीं है। वास्तव में आराध्य तो भगवान श्रीहरि हैं, विष्णु हैं, कृष्ण हैं, इनकी आराधना करनी चाहिए। तो इस पद्धति को ही भगवान चलाना चाहते थे। एक दिन पूजा ही करनी है तो की जाए भगवान की, विष्णु की जाए। श्री गोवर्धन जी साक्षात विष्णु है, इस पूजा का भगवान प्रवर्तन करना चाहते थे, इंद्र की पूजा करो फूलों के। जब भगवान ने ये कहा कि जिसकी जो जीविका है वही उसका देवता है, इष्ट देव है, उसी का आदर करना चाहिए, तो चार वर्णों के चार जीविका के साधन भगवान बताए। वर्ते तो ब्रह्मणा विप्रो राजन्य रक्षया भुआ। ब्राह्मण को चाहिए, ब्राह्मण की जीविका है वेद, वेद शास्त्र पढ़ना पढ़ाना, जग करना कराना, दान देना दान लेना, छह कर्म है ब्राह्मणों। तो भगवान कहे कि ब्राह्मण के लिए जीविका है वेद शास्त्र, तो इसीलिए उसका इष्ट देव है वेद। और क्षत्रिय के लिए जीविका का साधन है पृथ्वी की रक्षा शासन, उसके लिए पृथ्वी ही देवता है। और शूद्र के लिए भगवान ने कहा, वैश्य के लिए कहा वार्ता, वार्ता का अर्थ व्यापार, व्यापार उसकी जीविका है, इसीलिए व्यापार ही उसका इष्ट देव है। और शूद्र के लिए तीन वर्णों की सेवा करना, सर्विस करना, और इसी से उसकी जीविका चलती है, तो यही उसका देवता है, सेवा करना। चूंकि भगवान वैश्य में वर्तमान है इस समय, जन्म तो क्षत्रिय में हुआ भगवान का, भगवान कृष्ण का, वसुदेव जी क्षत्रिय है, महाराज जाति के वंश में जदू महाराज हुए, तो जदू महाराज क्षत्रिय हैं, परंतु जजाति महाराज ने साप दे दिया जदू को। जब जजाति महाराज जवानी मांगे अपने पुत्रों से, तो ये लोग जवानी नहीं दिए। सबसे बड़े पुत्र थे जदू महाराज, तो सबसे पहले मांग किया जजाति महाराज ने अपने बड़े पुत्र से कि बेटा अपनी जवानी दे दो और मेरी बुढ़ापा ले लो, कुछ काल तक मैं विषयों का भोग करना चाहता हूं। जद्दू महाराज ने नकार दिया, अरे नहीं, मैं अगर बूढ़ा हो जाऊंगा तो भगवान के मंदिर को धोना पूजा करना नहीं कर पाऊंगा। तो जो नहीं दिए तो भक्ति करने के लिए, हम बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं। और उनके पांच पुत्र थे जद्दू महाराज को लेकर, तीन पुत्रों से फिर पूछे बीच वाले से, वो लोग भी नकार दिए नहीं देंगे। चौथे पुत्र ने जवानी दिया जिनका नाम है पुरु, पुरु महाराज ने जवानी दिया जाति महाराज को, तो बहुत प्रसन्न हुए और समस्त भूमंडल का राज्य उन्होंने पुरु को दिया। बाद में 1000 वर्षों के बाद समस्त भूमंडल का राज दिया और जदू को दुर्वसु अनुद्रोही चार को इनके अधीन किया, ये लोग राजा नहीं बने। इसीलिए जदू महाराज के संतान को राजपूत नहीं कहते हैं, वास्तव में राजपूत, राजा के ही लड़के हैं, लेकिन जब अपने पूर्वज ने उनको साप दिया कि तुम लोग क्षत्रिय होते हुए भी राजपुत्र नहीं बनोगे, तो भगवान का जन्म जदू महाराज के वंश में हुआ। वसुदेव जी के पुत्र बने भगवान, लेकिन जन्म मथुरा में हुआ और भगवान ने विशेष रूप से लीला करने के लिए ब्रज में चुपके से चले आए, वसुदेव जी ही पहुंचाए भगवान को आधी रात के समय। तो अब ये गोप मंडली थी वास्तव में वैश्य जाति की, तो इसमें भगवान पले हैं, अथवा मीटिंग जो हो रही है वैश्यों की मीटिंग हो रही थी। विशा धन को कहते हैं, भूमि को, विशा धन, तो
वैश्य का अर्थ होता है निशा से जिनका संपर्क है, कृषि करना, व्यापार करना, गायों की रक्षा, ऐसा भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो भगवान बताए कि वैश्य का, वैश्य की जीविका है कृषि, वाणिज्य और गोरक्षा। इसमें यहां से बता रहे हैं कृषि वाणिज्य गोरक्षा कुशीदम चौधरी चतुर्थ स्वस्य वैश्यत्वाद उत्तम अपनी वैश्यवात्म विशिष्या कृषि की। कह चुके हैं पहले कि वैश्य की क्या जीविका है, फिर भी भगवान अपने को वैश्य मनन कर रहे हैं कि मैं वैश्य हूं, तो वैश्य की वार्ता को विशेष रूप से कह रहे हैं। कृषि वाणिज्य गोरक्षा, कृषि वाणिज्य सहिता गोरक्षा, कृषि और व्यापार के साथ गाय की रक्षा, ये तीन हुए एवं त्रयम और तुर्जम चतुर्थम कुशीदम। वैश्य की तीन जीविका है कृषि, व्यापार और गोरक्षा। गोरक्षा का मतलब केवल कसाईयों से रक्षा नहीं है, गाय का पालन करना, खिलाना पिलाना, ये गोरक्षा है। आजकल गोरक्षा के लिए सभा होती है तो केवल इसी पर जोर दिया जाता है कि कसाईयों से कैसे गाय को बचाना है, लेकिन गोरक्षा वास्तविक ये हुई कि कैसे गायों का पालन करना है, तो खिलाना पिलाना, रोग आदि से बचाना, सब तरह से। अगर गौएं बची रहेंगी तो पूरी जनता सुखी रहेगी, पूरा देश बचेगा, नहीं तो सबको मरना पड़ेगा, गौएं ही पालन कर सकती हैं। तो कृषि और व्यापार के साथ गोरक्षा तीन, और चौथी वृत्ति है वैश्य की, वो है कुशीदम। इसको वृद्धि जीवन कहते हैं, कहीं अपना पैसा या अन्न या कोई चीज रख दिए, विनियोग कर दिए, इन्वेस्टमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। और किसी के पास रहने से और वो महीने में या साल में वो कुछ धन बढ़ता है, एक रेट बांध दिया गया है लोक में मान्यता कि इतना साल में इतना बढ़ेगा। मान लीजिए 100 रुपया कोई लिया तो महीने में 1 रुपया बढ़ेगा, तो अगर अगले महीने में वो पैसा दे देता है तो 100 और प्लस 1, 101 देना पड़ेगा, या 2 बढ़े ऐसे कुछ रखा जाता है। इस तरह से न्यायपूर्वक सूद लेना भी एक जीविका है, लेकिन कैसे जीविका है, चतुर्थ जीविका। तुर्ज माने चतुर्थ होता है, जब तीन से कोई काम न चले, परिवार सफल करे, तो वह व्यक्ति ले सकता है सूद। उसको वृद्धि जीवन कहते हैं, मतलब धन रखा हुआ है और वो बढ़ेगा, वो नहीं बढ़ेगा मन में बढ़ेगा, चाहे खाता में कागज में बढ़ेगा उसको ऐसे कोई लोग भ्रम में पड़ सकते हैं कि रखने पर बढ़ेगा संस्कृत में वृद्धि जीविका कहते हैं और कुशीद भी कहते हैं उसको। तत्र तो भगवान कहते हैं कि चार वार्ता है, चार जीविका है वैश्यों की, कृषि, वाणिज्य, गोरक्षा और वृद्धि जीवन। तो इन चारों में वयम गोवृत्तयो निशम, हम लोग गोवृत्तय गोवृत्ति हैं, गायों से जी रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हम लोग गायों से जी रहे हैं, गायों का पालन करते हैं, चराते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, और गौएं दूध देती हैं, घी देती हैं, तो उसी से हम लोग परिवार पोष रहे हैं, चलाते हैं। क्या भगवान का प्रेम है ब्रजवासियों से, वे ब्रजवासियों में अपने को सम्मिलित करके कहते हैं वयम, हम लोग वैश्यों में भी वैश्यों की वार्ता में भी हम लोगों की वार्ता, हमारी जीविका केवल गो है, गौए हैं। और अनिशम, निशा का अर्थ होता है विश्राम या रात, अनिशम का अर्थ हुआ निरंतर, निरंतर। जैसे आप देखते हैं दिन में ऑफिस खुलते हैं, काम धंधा होता है, लेकिन रात के समय तो बंद हो जाता है, रात को निशा कहते हैं। तो यहां अनिशम का अर्थ है कि जिसमें रात नहीं होती, अर्थात काम बंद नहीं होता। हरि बोल, सावधान रहिए, इस तरह से अभी निशा करने लगे। अनिशम का अर्थ है निरंतर, इसका मतलब है कि हम लोगों की गाय के अलावा और कोई जीविका नहीं है। यदि हमारी जीविका और भी तरह से हो सकती है, कृषि वाणिज्य और सूद लेना, लेकिन भगवान कहते हैं कि वयम गोवृत्ते अनिशम, और आपत काल में भी, संकट काल में भी हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं, व्यापार नहीं करते हैं और सूद नहीं लेते हैं। सब समय केवल गाय ही जीविका है हमारी, गायों से ही हम लोग जी रहे, और कोई सहारा हम लोगों का नहीं। भगवान ये कह रहे हैं हम लोगों का सहारा केवल गौवे हैं। इसलिए हरिश्री जी कहते हैं कि जब गौवे ही हमारा सहारा है तो गाय को पोसने वाले की पूजा होनी चाहिए, गाय का वर्धन जो करे बढ़ावे उसकी पूजा करनी चाहिए। इसी से भगवान ने कहा गोवर्धन, गाय का जो पोषण करे बढ़ावे उसकी उसकी पूजा करेंगे। पर्वत का नाम ही है गोवर्धन, तो गौओं को बढ़ावा देता है, उस पर गौएं चरती हैं, पानी पीती हैं, सुखी रहती हैं, गोवर्धन इसीलिए नाम है उनका। ऐसे नहीं बिना सोचे समझे नाम दे दिया गया गोवर्धन, गाय को पोसने वाला, बढ़ाने वाला। वर्धन का अर्थ होता है सुख, सुख देने वाला, पोसने वाला, गोवर्धन। तो भगवान उसी पॉइंट पर आ रहे हैं कि हम लोग की जीविका गाय है, तो नंद बाबा अथवा किसी गोप ने या बहुत से लोगों ने प्रश्न कर दिया, तो ठीक है गायों से हमारी जीविका चल रही है और गौएं कैसे जी रही हैं? गौएं तो इंद्र की कृपा से ही जी रही हैं ना, वे वर्षा करते हैं, वर्षा से घास होती है, घास चरती हैं, गौएं खाती हैं पीती हैं, तब वो पुष्ट होती हैं। तो अंततः तो इंद्र ही हुए न ईश्वर, उनकी कृपा से गौएं जीती हैं और गौओं की कृपा से हम लोग जी रहे हैं। गौओं की जो जीविका है वो महेंद्र के अधीन है ना, इंद्र को कभी कभी महाइंद्र भी कहते हैं, वो महेंद्र, और कभी कभी ऐसे इंद्र कहा जाता है। तो भगवान ने मानो शंका किया कि लोग पूछेंगे कि गौओं की जीविका तो इंद्र के अधीन है, वर्षा और घास के अधीन, इसकी आशंका करके भगवान तुरंत बोले सत्वम रजस तमेति स्थिति स्थिति उत्पत्यंत हेतव रजसोत्पद्यते विश्वम अन्योन्यम विविधम जगत। तुरंत आ गए, उनको बहुत शंका है कि ये लोग पकड़ेंगे हमको गलत बोलने पर, तो कहते हैं सब नेचर कर रही है, कोई इंद्र का क्या हाथ है। प्रकृति के तीन गुण हैं सत्व रज और तम। तो गोप लोग भी कोई कम पढ़े लिखे नहीं तो सब समझते हैं, आजकल के लोगों को तो कहा जाए कि प्रकृति के तीन गुण हैं, तो प्रकृति क्या है यही मालूम नहीं है, प्रकृति के तीन गुण क्या मालूम होंगे। तो वो लोग जानते थे, तो प्रकृति के तीन गुण हैं भगवान बोल रहे हैं। सांख्य शास्त्र है एक, एक को शेश्वर सांख्य कहते हैं और एक को निरीश्वर सांख्य। एक सांख फिलोसफी में जो कपिल नाम का एक ऋषि चलाया था, भगवान कपिल देव ने, उसने सांख्य माना, प्रकृति के सारे चीजों को, तत्वों को स्वीकार किया, लेकिन ईश्वर को नहीं स्वीकार किया, ईश्वर को नहीं माना, तो उसको निरीश्वर सांख्य कहते हैं। जिसमें ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की गई है उसको निरीश्वर सांख्य मत कहते हैं। तो भगवान उसी का आश्रय लेकर के पट्टी पढ़ा रहे हैं गोपों को। सत्तम रजस तम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, प्रकृति के तीन गुण हैं और ये तीनों गुण स्थिति उत्पत्ति अंत है। तब सत्वगुण से इस जगत का पालन होता है और रजोगुण से इसकी उत्पत्ति होती है और तमोगुण से इसका अंत हो जाता है। पालन करने के लिए घास जरूरी है, गौओं के लिए पानी जरूरी है, तो ये सब सत्वगुण से होता है, हो रहा है, पालन अपने आप हो रहा है, प्रकृति के गुण कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं सब नेचर कर रहे हैं, नेचर कर रही है, प्रकृति कर रही है, लगता है कि कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सुपीरियर, कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, अपने आप सब हो रहा है। तो भगवान उसी को कह रहे हैं, निरीश्वर सांख्य मत के अनुसार बोल रहे हैं दो श्लोकों में। रजसा उत्पद्यते विश्वम, रजोगुण से सारे जीवों की उत्पत्ति होती है, रजसा विश्वम उत्पद्यते, सारा संसार रजोगुण से उत्पन्न होता है। ये बात है अन्योन्यम विविधम जगत, अन्योन्यम स्त्री पुरुष के संयोग से विविध प्राणी उत्पन्न होते हैं, सभी जगह स्त्री और पुरुष हैं, और योनियों में भी, जैसे पशु में, पक्षी में, मनुष्य में, सब जगह स्त्री पुरुष हैं, दो तरह के प्राणी, स्त्री और पुरुष, और दोनों के संयोग से उत्पद्यते विश्वम या उत्पद्यते विविधम जगत, जगत माने जीव समुदाय, विविध प्रकार के जीव देखे जाते हैं, अनेक प्रकार के छोटे छोटे शरीर वाले, बड़े शरीर वाले, भिन्न भिन्न स्वभाव के, वे सब पिताजी पैदा होते हैं। इसमें कारण क्या है, प्रकृति का रजोगुण। हरेक श्लोक के बाद ऐसा समझना चाहिए भगवान ने कह रहे हैं कि जो प्रकृति के का गुण रजोगुण सृष्टि करता है और सत्वगुण पालन करता है और तमोगुण अंत कर देता है, बीच में इंद्र की क्या आवश्यकता है, वो क्या करता है, हम नहीं समझ रहे हैं। हर एक बार ये बात कह रहे थे, हमारे समझ से इंद्र को मानना एक फालतू बात है। प्रकृति के तीन गुण कर रहे हैं, रजसा चोदिता मेघा वर्षन तंबूनी सर्वतम। अब कहते हैं कि पालन इंद्र करते हैं गौओं का, गौओं के पालन के लिए, किसी के पालन के लिए वर्षा की जरूरत है, लेकिन हमने सुना है कि रजोगुण के द्वारा प्रेरित होकर के मेघ अंबूनी बरसाते, जल बरसाते हैं, रजोगुण प्रेरित करता है बादलों को और तब वर्षा होती है। कोई प्लान से वर्षा हो रही है ऐसा मैं नहीं मानता, भगवान ने कहा, कोई किसी के योजना से ये वर्षा हो रही है ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि वर्षा सर्वतः सब जगह होती है। ऐसा भी देखा गया है कि शिला पर और ऊसर पर और समुद्र में भी वर्षा होती है, सर्वतः का ये अर्थ। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं इसी टीका में, सर्वतः इति समुद्र शीलो सरा दिशु अपि वृष्टिम दर्शना न प्रेक्षावक पूर्वकत्व दृष्टि रीति भाव। कोई प्लान, कोई योजना है कि यहां वर्षा करनी है, यहां घास होगा या होगा, गौए खाएंगी, किसी के प्लान से वर्षा नहीं होती है, वर्षा होती है रजोगुण के द्वारा। कोई इसके पीछे कोई बुद्धि नहीं है, कोई प्लान नहीं है, अगर ऐसा होता तो वर्षा फिर ऊसर पर क्यों करती जाती है, वहां तो बेकार है, वहां घास उगेगी नहीं, ऊसर भूमि यहां पर जुगिय बीर बाबा बट वृक्ष के पास वहां भी ऊसर भूमि है, खेती नहीं होती है। तो जो ऊसर है तो अगर ईश्वर को घास पैदा करना है तो वहां बेकार क्यों बरसाएगा? ये भी देखा जाता है कि समुद्र में भी वर्षा होती है, वहां तो कोई घास नहीं हो रही है। देखिए भगवान का तर्क, समुद्र में कोई घास नहीं होती है और पत्थर, पत्थर पर तृण नहीं जमता है, केवल पत्थर, माटी का संयोग रहता है तब तृण जमता है। केवल पत्थर है तो वहां क्यों बरसाएगा कोई? अगर वर्षा का देवता है कोई तो वहां फालतू क्यों बरसाएगा? इसका मतलब है कि कोई प्लान से वर्षा नहीं हो रही, हो रही अपने आप बाय चांस होती रहती है। भगवान का यह विचार उनके वास्तविक उपदेश से भिन्न हो रहा है, ये तो आसुरी विचार है। भगवान गीता में कहते हैं कि असुर लोग क्या सोचते हैं, डिमानियक पीपुल लोग क्या सोचते हैं, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहु रनीश्वरम अपरस्पर संभूतम की मंडित काम है तुकम। भगवान कहते हैं कि असुर लोग बोलते हैं आपस में, किताबें छापते हैं, प्रवचन करते हैं, क्या कहते हैं? असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुरनीश्वरम, यह जगत असत्यम है नहीं। भगवान कहते हैं कि वे लोग बोलते हैं कि जगत असत्यम, यह संसार मिथ्या है, यह कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, कोई नहीं, कोई न आदमी है, न गाय है, न पेड़ है, न कुछ नहीं, केवल देखने में भ्रम है। कभी कभी लोग सपना का उदाहरण देते हैं, जो सपना में हम कई चीज देखते हैं, है ना, सपना सभी लोग देखते हैं, कोई ऐसा नहीं जो न देखता हो, तो सपना देखते हैं, लेकिन सपना में देखी हुई चीज जगने पर गायब होती है, वास्तव में वो चीज है नहीं। तो कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं जगत कुछ नहीं, एक सपना है, ये सपना है। तो एक बार बहस हो रही थी तो हमने कहा कि जब जगत सपना है तो आप जो बोल रहे हैं वो भी सपना है ना। अगर सपना ही सब है तो आपका बोला हुआ सपना मान लिया जाए, जगत असत्य नहीं है, या है, हमारी मान्यता असत्य है। जैसे श्रीपाद शंकराचार्य जी समझाते हैं कि जैसे रज्जु में सर्प का भ्रम होता है, कहीं रस्सी रखी हुई है कुंडली बना करके सजा करके, और अंधकार है और कोई जाने नहीं, देख करके गिरेगा भागेगा कि अरे सांप बैठा है, सांप भी कुंडली बना करके बैठते हैं, तो वहां सांप है नहीं, है वास्तव में रस्सी, पर सांप का भ्रम होता है। व्यक्ति कभी कभी तो गिर भी जाता है, कभी कभी तो यहां तक देखा गया है कि मुंह से गाज फेंक रहा है बिना मतलब, कि सांप के काटने पर मुंह से गाज आता है। हमारे गांव में एक बार तो कुछ नहीं काटा था, वो गुड़ बनाने वाले कराह से पैर थोड़ा कट गया था। कलवार कहते हैं जहां गुड़ बनाया जाता है, गन्ना को पेर करके रस को औंटा जाता है, तो वहां पर 10-20 लोग प्राय रहते ही हैं गांव के। बाद में जब भेली बनाई जाती है तो उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद गुड़ दे देते, अब पता नहीं सिस्टम है कि नहीं। तो वहां लोग बैठे ही रहते हैं, आग तापते हैं, लोग ऐसे गुड़ उतरा हुआ था, गुड़ उतर गया था, कड़ाह उतर गया था, कड़ाही और गुड़ ठंडा हो रहा था। तो एक व्यक्ति, हाँ हम लोग आग ताप रहे थे, कई लोग थे, तो आग ताप रहे थे, तब तक आपने राधा वल्लभ दास का नाम सुना होगा। राधा वल्लभ दास के बड़े भाई जो इस काल में मेरे बाद गए थे सबसे पार, तो वो भी थे वहां, तो वो गुड़ को फावड़ा, फावड़ा कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, खुरपा खुरपा उससे गुड़ को उलट रहे तो किनारे किनारे पहले किनारे किनारे ठंडा कर रहे। तब तक किसी ने कहा, किसी को सांप दिखाई पड़ा वास्तव में, कोई सांप रहा होगा डोना चाहे कोई तो दिखा और घबरी सांप सांप, तो जो वो गुड़ को खोद रहे थे वो भी भागे, भागने में कड़ाह से लग गया पैर में, थोड़ा सा कड़ाह से थोड़ा लग गया और उनको तो भाव हो गया कि सांप काट दिया हमने। केवल भ्रम हुआ, भाव हुआ कि सांप काट दिया। इसके बाद और उनको बहुत तीता मिर्च दिया गया खाने के लिए, टेस्ट करने के लिए सांप काटा है क्या है। तो वो पूरा इतना बड़ा मिर्च खा गए और ठीक से बोलिए तीत लगातार ना ना, वो तीत नहीं लग रहा था, जो भी हो वह तीता नहीं लग रहा, इसका मतलब तब तो सांप का जहर चढ़ गया, सांप का जहर चढ़ने पर मिर्च तीता नहीं लगता है, तो जहर चढ़ गया है, अब टाइम करके कुदरा ले जाने की तैयारी होने लगी टाउन में दवा कराने के लिए, सुई देने के लिए करने। लेकिन फिर बीच बीच में पूछते थे अब तबीयत का थोड़ा ठीक बस। होते होते जब सवेरा बिल्कुल हुआ तो कटा हुआ था वो देख रहे थे, तो कड़ाह में जो कटा था उनका चमड़ा थोड़ा सा वो सटा हुआ था, वह कड़ाह में लगा हुआ, अरे तरह के सांप थोड़े कट ले मन जीते वो लगे गाली देने उनको बहुत कहते हैं कि सांप कट ले बा सबको तबाह किया। तो मन में भ्रम था, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि रस्सी रखी हुई है और रस्सी को देखते ही भ्रम हो जाता है कि सांप है, तो आदमी घबराने लगता है, गिर जाता है, हो जाता है, तो वास्तव में वहां सांप है नहीं, है वास्तव में रस्सी, पर रस्सी सत्य है ना। मान लीजिए कोई कहे कि नहीं ये मिथ्या है सांप, सांप तो नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन रस्सी है, रस्सी को भी आप नहीं उड़ा देंगे, कहेंगे नहीं नहीं रस्सी रस्सी भी कुछ नहीं है, क्यों नहीं है, रस्सी से काम लेते हैं, बाल्टी से कुआं से जल निकालते हैं, कई काम होते हैं, तो कहे कुआं से जल निकालना भी झूठा है, बाल्टी भी झूठा है, ये सब बोलने वाला ही झूठा है वास्तव में। तो इस संसार में भ्रम होता है कि ये मेरा है ये चीज और मैं यह देह हूं, यही है फाल्स, देह है, देह झूठा नहीं है, लेकिन देह को मैं मानना कि हमारा स्वरूप है, मैं ही यह देह हूं, यह झूठा है। इस संसार में किसी चीज को अपना मानना कि मेरा है मेरा है मेरा नहीं है, ये मानना झूठा है, लेकिन ये दुनिया सत्य है, भूमि सत्य है, जल सत्य है, वायु सत्य है, सूर्य का प्रकाश सत्य है, मोटर गाड़ी सत्य है, रेल सत्य है, किताब सत्य है, ये सब सत्य है, नहीं कि झूठा हम पढ़ रहे हैं और किताब भी नहीं है कुछ नहीं। तो कुछ तरह ऐसे बोलते हैं जगत असत्य है, असत्यम अप्रतिष्ठम पे जगत आहुरनेश्वरम, भगवान बोले हैं गीता में, कहते हैं असुर लोग कहते हैं कि जगत कुछ नहीं झूठा है, और ये भी कहते हैं कि इसका कोई आधार नहीं है, अगर ये पूछा जाए कि दुनिया कहां टिकी है, तो जब है ही नहीं तो टिकने का क्या प्रश्न है। अप्रतिष्ठम, इसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है कहां पर है, सबके बाद प्रश्न होगा नहीं कि दुनिया कहां टिकी है। भगवान गीता ने स्वयं ही बताए हैं कि मुझमें टिकी है, मैं मतस्थ सर्वभूतानि, और जो असुर लोग बोलते हैं वही बात भगवान यहां बोल रहे हैं, पर उनका तत्कालिक आशय है असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुर अनिश्वर। और असुर लोग ये भी बोलते हैं कि जगत अनिश्वर है, अनिश्वर अनिश्वर नहीं ईश्वर, इसका कोई कंट्रोलर नहीं है, इसका कोई व्यवस्थापक नहीं है, अपने आप चल रहा है, अपने आप बना है और अपने आप चल रहा है, अपने आप गायब हो जाएगा। इसके पीछे इसको बनाने का, इसको पालने का, चलाने का और नष्ट करने का कोई प्लान नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है, कोई ईश्वर है नहीं, वास्तव में अपने आप सब चल रहा है। ये तो वैसे ही कहना होगा जैसे कोई कहे, यहां इतने लोग जुटे हैं इसका कोई प्लान नहीं था और न तो वास्तव में लोग बैठे हैं, झूठा प्रतीत हो रहा है कि खड़िया गांव है और यहां पर भागवत हो रहा है, कोई प्लान किया, कुछ भक्तों ने व्यवस्था की, नहीं अपने आप हो चुका है, ये घर भी अपने आप आकर के जमा हो गया, लोग अपने आप आ गए, यही आकाश से टपके, ये नहीं कि कोई भगवानपुर से आया चाहे बॉम्बे से आया, नहीं, सब अकस्मात यही हो गए। ऐसे बोलते हैं लोग कि जो कुछ भी भूमि पहाड़ जल आदि हो गए अपने आप हो गया, इसको करने वाला, इसका प्लान करने वाला कोई ईश्वर नहीं है। और यह बात भी ज्यादा लोगों को अच्छी लगती है, अगर ईश्वर की सत्ता के बारे में कहा जाए तो झगड़ा करेंगे, कौन ईश्वर, कौन ईश्वर, ईश्वर की धारणा ठीक से नहीं है, तो ये अच्छा मानते हैं कि ईश्वर नहीं है और जगत अपने आप चल रहा है, बाई चांस हो गया। एक बार एक व्यक्ति ऐसे कहा कि ये तो बाई चांस हो गया, तो श्रील प्रभुपाद जी पूछे व्हाट डू यू मीन बाई बाई चांस, बाई चांस का क्या मतलब है, ना ये चांस का क्या मतलब है, चांस का मतलब बताओ, चांस का क्या मतलब बताएं, जो कोई किया नहीं है अपने आप हो गया सब, कितना फालतू विचार है। ये जगत एक योजना से बना है, प्लान से बना है, इसके बनने का सब डेट है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बना है, किसके बाद कैसे सृष्टि हुई, ऐसा शास्त्र वर्णन करता है कि श्री भगवान गर्भ समुद्र में सोए थे, ब्रह्मांड की सृष्टि के बारे में कह रहे हैं, जगत की सृष्टि, जीवन गर्भ समुद्र में सोए थे तो उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ, कमल बहुत बड़ा था और उसके पंखुड़ी पर भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, भगवान के नाभि से उत्पन्न कमल पर श्री ब्रह्मा जी जन्म लिए और ब्रह्मा जी कई मानस पुत्र उत्पन्न किए, चार संकादिक मन से उत्पन्न किए और कुछ से, जैसे मरीचि को उन्होंने मन से उत्पन्न किया और कुछ को अपने देह से, ऐसे सोचते थे कि हमको पुत्र हो तो पुत्र निकल जाते थे। ये वर्णन है तृतीय स्कंध में कि ब्रह्मा जी ने इस तरह सृष्टि किया, तो ब्रह्मा जी से सृष्टि हुई कई पुत्रों की, जैसे भृगु, दक्ष, मनु महाराज इत्यादि, और इन लोगों ने फिर सृष्टि किया, मरीचि जी ने कश्यप को उत्पन्न किया, कश्यप जी से सारी सृष्टि भरी हुई है। तो इस तरह से किसके बाद, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, फिर ये भूमि जल पहाड़ कैसे उत्पन्न हुए और सब जीव कैसे उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये तो हम इतिहास में पढ़ते हैं भागवत में, लेकिन वर्तमान में भी देख रहे हैं ना कि एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति पैदा हो रहा है और उसका पालन होता है, उसको कपड़ा सिलाया जाता है, जूता सिलाया जाता है, उसको पालन से उसको स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि एक दिन कोई कहे कोई पढ़ने नहीं गया था, कोई स्कूल की व्यवस्था नहीं, अपने आप सब हो गया। कह देना तो इतना आसान है, लोग मान भी लेंगे, लेकिन कितना अज्ञान है, यह सब चीज का एक ऑर्डर है, सब चीज की एक व्यवस्था है संसार में। तो ऐसे ही ये पृथ्वी बनी, पहाड़ बना, समुद्र बना, सबकी व्यवस्था की गई, सब कैसे बने, सबका इतिहास है, भगवान सृष्टि किए हैं, वास्तव में ईश्वर सृष्टि किए, भगवान विष्णु से कृष्ण से सब सृष्टि हुई है। लेकिन लोगों में प्रचलित बात है कि नहीं नहीं नेचर कर रही, नेचर कर रही। एक व्यक्ति विद्यार्थी था, हमसे बहुत बहस कर रहा था, बहुत बहस कर रहा था, नेचर कर रही है, नेचर कर रही है, नेचर कर रही है, इस पर इतना जोर दिया तो मैं कह दिया नेचर तुम्हारी दादी है, नेचर कर रही है, नेचर से कभी भेंट हुआ है, देखे हो? फिर कहते साधु को ऐसे बोलना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, तुम नेचर नेचर कह रहे हो, नेचर है क्या? नेचर का अर्थ होता है स्वभाव, किसका नेचर, किसी का नेचर होगा ना, तो नेचर है कृष्ण का। भगवान गीता में इस बात को खुलम खुलम कहते हैं, मेरा जो स्वभाव है, बहिरंग स्वभाव, बाहरी स्वभाव जो सच्चिदानंद घन नहीं है, आंतरिक स्वभाव भगवान का है कि वे सच्चिदानंद घन है, चिन्मय है, दिव्य है, परम सुंदर है, वेणु बजाते हैं, गौएं चराते हैं, ये उनका वास्तविक स्वरूप है। लेकिन उनका बहिरंग प्रभाव कुछ है, बाहरी प्रभाव, उसको बहिरंगा प्रकृति कहते हैं, भगवान का ही नेचर है। तो भगवान की एक शक्ति है विशेष, वही जगत की सृष्टि करती है, पालन करती है, प्रलय करती है। इस बात को लोग नहीं समझ पाते हैं, प्रकृति कहते हैं लेकिन किसकी प्रकृति ये नहीं स्वीकार करते। तो भगवान गीता में कहते हैं कि असुर लोग ऐसा प्रवचन करते हैं, अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम है, तो ये सब अपने आप हुआ है और ये क्यों हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, केवल विषय भोग के लिए हुआ है, बस यहां पर जन्म लिए हो और कुछ करने की बात नहीं है, सोचने की नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, बस यहां जो मिला खूब खाओ पियो मौज करो बस। गीता में भगवान बोलते हैं कि असुर लोग ऐसे बोलते हैं, बस ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खूब खाओ पियो और आनंद में रहो। एक भारत का ऋषि हुआ बहुत पहले, उसका नाम था चरवाक, उसने कहा कि जावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मी भूतस देह से पुनरा गमनम कुतः, जब तक जीना है तब तक सुख से जियो, और सुख से जीने के लिए शरीर स्वस्थ रखना आवश्यक है, तो शरीर स्वस्थ रखने के लिए घी पियो, खूब घी पी, जावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पीवित। तो कोई कहे कि मैं इतना पैसा नहीं है कि हम घी पी सके, तो ऋण ले लो, ऋण लेकर के घी पियो, नहीं फिर ऋण देना पड़ेगा, लोन देना पड़ेगा ना, मान लीजिए वो कहे कि लोन देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, फिर वही वृद्धि जीविका बढ़ करके और देना पड़ेगा। तो कहते भस्मी भूता से देह से पुनर्गमनम, तो कौन ऋण देगा, देह तो यही चलकर खत्म हो जाएगा, देह तो यही खत्म होगा, ऋण किसको देना होगा, कोई नहीं चुकाना पड़ेगा, बस जब तक मरण नहीं है उसके पहले जितना ऋण लेना हो लो, अब घी पियो, वो खाओ पियो आनंद से रहो, कौन आएगा, कौन ऋण चुकाएगा, उस मूर्ख को पता नहीं है कि वो ऋण नहीं चुकाएगा तो उसका बेटा पकड़ा जाएगा, और बेटा तो पकड़ा ही जाएगा, वो भी दूसरे जन्म में ऋण चुकाएगा। एक बार एक व्यक्ति कहा प्रभुपाद जी से अमेरिका में, तो भारतवर्ष में भी ऐसे ऋषि होते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है जो इतना विषय भोग पर जोड़ दे और भजन पर नहीं। तो प्रभुपाद जी तुरंत बदल गए, वो कहते हैं जो भारत का ऋषि है ना, तो इसलिए तो घी पीने को कहता है, मांस खाने को नहीं कह रहा है ना। अमेरिकन ऋषि होता तो शायद वो बताता, लेकिन घी पीने को कह रहा है। तो ये फिलॉसफी देते हैं बड़े बड़े लोग, जगत कुछ है नहीं, बस काम है तो कब, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, विषय भोग के लिए संसार बनाया गया है। देखिए ये भी बोलते हैं कि इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसका अंत करने वाला कोई अथॉरिटी नहीं है, फिर भी ये मानते हैं संसार किस लिए है, तो बस भोगने के लिए है। और ये कैसे पता चला, कोई बनाने वाला नहीं है तो तुमको कैसे पता चला कि किस लिए बनाया गया है, बस खाना पीना देखते हैं दुनिया में। कुछ लोग ऐसे कहते अरे खाओ पियो क्या ईश्वर के चक्कर में पड़े, खाओ पियो आनंद करो ये करो वो करो, लेकिन करने में ही अगर फंस जाएंगे तब तो, जैसे सांड घूमते रहते हैं कहीं कहीं, हमने देखा है बनारस सब्जी मंडी में या जहां तहां, वो ये नहीं जानते हैं कोई व्यक्ति इसका अधिकारी है सब्जी का, उसने प्लान किया है बेचने के लिए, वो बस मुंह लगा देता है खाने, जिस लगाता है देखे है ना, कहीं भी मुंह लगा देना है खाने की कोशिश करना है, तब तक डंडा ढा से पड़ता है, वो खा भी नहीं पाता है, खाने चलता है तब तक दुकानदार मारता है मुंह पर, और उसके बाद जोर जोर से मार पीट करके भगा देता। ऐसे ही मूर्ख लोग बस खाना जानते हैं, ये कहते हैं इसको बनाने वाला कोई नहीं है लेकिन खाने वाला मैं हूं, क्यों, जब तुम खुद नहीं बनाए हो कोई चीज, तुम नहीं बनाया है तो तुम खा कैसे रहे हो, तुम कैसे भोग सकते हो इसको, संसार में अनेक सुविधाएं हैं अनेक चीज हैं लेकिन इनको लेने का तुमको क्या अधिकार है, जब बनाए नहीं, जब मनुष्य ने पेट्रोल बनाया नहीं तो पेट्रोल को लेकर के गाड़ी चलाने का अधिकार क्या है, क्या किसी का बाप पेट्रोल लेकर के आया था, कोई ऐसा किया था, एक बार पटना में ऐसी घटना हो गई थी मैं प्रवचन करते करते भूमि रापो नलो वायु खम मनोबुद्धि रे बच्चा इसकी व्याख्या कर रहा था, मैंने कह दिया कि क्या किसी में पेट्रोल बनाने की शक्ति है, भगवान बनाए हैं तो चाहे जितना गाड़ी चलाओ कुछ भी करो हवाई जहाज चलाओ चलाओ, लेकिन बनाने की शक्ति नहीं है किसी में। मैं उदाहरण दिया, वास्तव में वहां चीफ मिनिस्टर थे लेकिन मैं चीफ मिनिस्टर न कहकर के प्राइम मिनिस्टर कहा कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर कहीं कार से जा रहे हैं और कार का पेट्रोल खलास हो गया, तो क्या प्राइम मिनिस्टर में शक्ति है कि अपने पेशाब करके पेट्रोल बना देंगे, अब तो वहां तो रुकना ही पड़ेगा ना, भगवान का बनाया हुआ पेट्रोल देंगे तब चलेगा, किसी में भी एक ग्राम पेट्रोल बनाने की शक्ति नहीं है। क्या है, गाड़ी में पेट्रोल घट जाए तो अपने अंग से अपने मूत्र से या कैसे चला सकते हैं, इतना जीव परवश है, तो संसार को भोगने की प्रवृत्ति है कि हम पेट्रोल ले लें, हम रुई ले लें या प्लास्टिक ले लें, पत्थर ले लें, घर बना लें, लकड़ी ले लें, सब करें, ये खाएं पिए बनाएं, लेकिन जो कहा जाता है कि ये भगवान ने सब दिया है तो कहते नहीं 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 भगवान को कौन देखा है, उसे प्रकृति दे रही है और प्रकृति इनको फोन की है कि तुम खाया करना है, प्रकृति दी है सब व्यवस्था, भगवान की है उनकी व्यवस्था, इसीलिए उनकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए, नहीं तो जैसे सांड पर डंडा पड़ता है वैसे ही डंडा पड़ेगा, खा भी नहीं पाएंगे भोग भी नहीं पाएंगे। भगवान गीता में कहते हैं कि पतंती नरके सुचल, नरक में फेंकता हूं मैं, इस तरह की बातें नहीं बोलनी चाहिए कि ईश्वर नहीं है, ये नहीं है, ये अपने आप से व्यवस्था हो रही है। भगवान तो इतना यहां पर गोपों की सभा में इतना फ्रैंक नहीं बोल रहे हैं, कहते हैं हाँ रजोगुण है, रजोगुण से बादल उत्पन्न होते हैं और बादल सब जगह पानी बरसाते हैं, तो इसके द्वारा कह रहे हैं कि ये कोई बहुत सोच समझ करके नहीं होता है, कोई प्लान द्वारा नहीं होता है। प्लान द्वारा होता तो शिला पर पत्थर पर क्यों वर्षा होती और समुद्र में क्यों होती तथा ऊसर भूमि में क्यों वर्षा होती? तब क्या माना जाए कि अपने आप बस बादल उत्पन्न हो गए, कोई प्लान नहीं, कहीं जहां तहां वर्षा हो ये करो। तो ये भी तर्क दिया था कहीं कहीं इतनी वर्षा करते हैं बादल, इतनी वर्षा जहां कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वर्षा से और सर्वनाश हो जाता है, देखा जाता है ना, अति वृष्टि हो गई, अति बाढ़। तो अगर किसी के प्लान से होता तो ऐसी गलती क्यों होती? कोई आदमी बोरिंग चालू करे, मोटर चालू करे पटाने के लिए, जहां सुख रहा है, जहां जरूरत है वहां नहीं, जहां ज्यादा पानी भरा हुआ है वहां पर थोड़े मोटर चालू करके या डीजल भरेगा पानी उसी में। इसका मतलब है कि कोई प्लान नहीं है, हो रहा है हो रहा है। सब मिलाकर के भगवान का आशय यह था कि इंद्र कुछ नहीं है, उसकी पूजा नहीं करनी, इस पॉइंट पर ला रहे थे। रजसा चोदिता मेघा वर्षं तम्बूनि सर्वतः प्रजास्तैरेव सिद्ध्यन्ति महेन्द्र किं करिष्यति। रजोगुण के द्वारा बादल उत्पन्न होते हैं, उनसे प्रेरित होकर के, रजोगुण से प्रेरित होकर के बादल सब जगह वर्षा करते हैं। तो प्रजा चाहे घास हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे गाय हो, कोई हो, प्रजा तैरेव सिद्ध्यन्ति, उसी जल से सिद्ध होते हैं, मतलब जल से जीवित रहते हैं, पुष्ट होते हैं, खाते हैं पीते हैं। महेंद्र किम करे, इसमें महेंद्र क्या करता है, क्या करेगा, क्या उपकार करेगा या क्या अनिष्ट करेगा? चक्रवर्ती पाद जी अर्थ करते हैं क्या करेगा, इसका मतलब भगवान कह रहे कि यदि हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो क्या करेगा? महेंद्र किम करिष्यति, न किम अपि इति अर्थ, कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोग न करें पूजा तो क्या करेगा? और अब आगे भगवान कहते हैं नंद बाबा ने कहा कि फिर भी योग क्षेम के लिए देवता की अपेक्षा होती है। तो कृष्ण ने कहा हां देवता तो देवता की अपेक्षा होती है, लेकिन कौन देवता हम लोगों के लिए है ये तो पहचानना होगा ना। हमारा देवता कोई और है, हम दूसरे को मान करके पूज रहे हैं। पहले तो हम लोगों को हम लोगों के जीवन में कोई ठिकाना नहीं, कुछ नहीं है। क्या है ठिकाना हम बता रहे, न नह पुरो जनपद न ग्रामा न गृहा वयम नित्यम बनो खस्तात वनशैल निवास में। हे तात, हे पिताजी, न अस्माकं पुरः पत्तनानि न, हम लोगों के नगर नहीं है। नगर मतलब किसी किसी के नगर ही जीविका होते थे, पूरा नगर एक आदमी का होता था, मालिक रहता था, टैक्स लेता था। हम लोगों का कोई नगर नहीं है, आवास आदि होने की बात तो दूर रही, कुछ भी नहीं है नगर में, न जनपदा और न तो कोई हम लोगों का देश है। देश मतलब स्थान, कोई अपनी जगह, जमीन और क्षेत्र कुछ नहीं है। और न गृहा, यहां तक कि एक स्थायी घर भी नहीं है। आजकल भी बहुत लोगों का घर नहीं है, भाड़ा के घर में रहते हैं, वो तो गृह नहीं माना जाएगा। न गृहा, हमारा गृह भी नहीं है। और न ग्राम, कोई गांव के हम अधिकारी नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई जनपद नहीं है और न कोई नगर आदि, सब जगह न न लगा है। न पुरह, न जनपदा, न ग्रामा, न गृह, कुछ नहीं है। भगवान ये कहते हैं हम लोग एक गधेरा की तरह घूम रहे हैं, कुछ नहीं है हम लोग। वास्तव में ये जीवन है वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, कोई स्थान ठाव ठिकाना नहीं है। वयम नित्यम बनम कस, हम लोग नित्य ही वनवासी हैं, वन में रहते हैं। वन शैल निवासी न, अरे पिताजी वन और पहाड़ में ही कहीं हम वासी हैं, किसी तरह गुजारा कर रहे हैं, वन में रहते हैं। वृंदावन वन ही है और शैल श्री गोवर्धन जी हैं चाहे और पर्वत हैं, तो वन शैल निवासी न, हम लोग पहाड़ में रहते हैं और वन में रह रहे हैं, वही हमारा निवास स्थान है। अतः हमारे लिए वन और पहाड़ ही वास्तविक योगक्षेम का कारण है, यही हमारा पालन कर रहा है। हम लोग वन से जी रहे हैं, पहाड़ से जी रहे हैं। कोई न व्यापार है न नौकरी है, कुछ नहीं है हम लोगों का, हम गौए हैं और गौए जी रही हैं वन से पहाड़ से। ये बिल्कुल व्यवहारिक बात भगवान बोल रहे हैं। हम लोग देखते थे जब बरसात चढ़ती थी, वर्षा का दिन आ जाता था, चालू होता था, तो हजारों हजार गौएं भैंस पशु देहात से नीचे से पहाड़ पर चढ़ा दिए जाते थे। इसमें से प्राय सभी लोगों ने देखा होगा, इधर के लोग पहाड़ पर चढ़ा देते हैं और पूरे चार महीना बरसात में पहाड़ पर रहती हैं, कुछ अधिक ही, और वहां से फिर नीचे उतरती हैं गौएं। तो पहाड़ एक ऐसा है जो किसी का नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, भगवान का है, और भगवान के बाद तो अब बिहार गवर्नमेंट का हो गया ये बिहार सरकार का हो गया। अपने आप ये सब वास्तव में बिहार सरकार ने नहीं बनाया है कुछ भी, बिहार पर तो सरकारें बदलती रहती है, सरकार ही खुद स्थायी नहीं है। कुछ दिन पहले अंग्रेज ये कहते होंगे कि ये पूरा भारत हमारा है, वे चले गए, उसके पहले दूसरे राजा लोग कहते हैं, और इसके बाद ये पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं कुछ काल तो कहती हैं आओ ये हमारा हो गया बिहार सरकार, बिहार की कौन सरकार वर्तमान है, पहले कौन थी, ये बदलता रहता है। पहाड़ ज्यों का त्यों रहेगा, उस पर केवल नाम बदलता रहेगा, इस सरकार की हो गई, इस सरकार की हो गई। तो इसमें हम लोग प्रयोग करते हैं, पर ये विचार नहीं करते हैं कि वास्तव में यह विष्णु सरकार की सब चीज है, भगवान की सब है वास्तव में। ये सरकार बनने वाले सरकार में जो है वो जन्म भी नहीं लिए थे तभी का पहाड़ है, और ये धरती सब रहेगी और ये मरते जाएंगे, पद छोड़ छोड़ करके मरते जाएंगे, क्लेम करते हैं कि हमारा है। और लोगों की ऐसी दुर्बुद्धि है कि भगवान को न देख करके वे नाम दूसरे का दे ही देते हैं। हम लोग अभी कुरुक्षेत्र से आए, वो कुरु महाराज का नाम है उस क्षेत्र में, कुरु महाराज ने वास्तव में उस प्रदेश को संवारा था। चलिए वो तो एक राजर्षि के नाम से है या भरत महाराज के नाम से भारतवर्ष है, इधर वर्तमान में क्या कोई फील्ड है, पहले नाम देते थे रामलीला मैदान, तो बाद में अब गांधी मैदान हो गया, तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या मैदान होता रहेगा। वो मैदान वही है और भगवान ने बनाया है, भगवान का नाम होना चाहिए। जब लोगों को ज्ञान होगा ना कि कृष्ण ने सब कुछ बनाया, भगवान ने बनाया, जब नाम बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे, तब तो बच्चों को या किसी को ज्ञान नहीं होगा कि वास्तव में भगवान सृष्टि किए हैं। जैसे आजकल कोई चीज है, कुछ लोग रूपांतरित करते हैं, पैकेट बना देते हैं और तुरंत उस पर लिख देते हैं मैन्युफैक्चर्ड बाय दिस कंपनी, यहां तक कि दूध उध तक के लिए, दूध पैकेट में है, भगवान ने दूध बनाया है, गाय बनाया, दूध बनाया, लेकिन उस पर लिख देते हैं यह कंपनी दूध बनाई। एक सत्य बात है, अमेरिका में एक 15 वर्ष के लड़के से मैं पूछा
जानने के लिए जिज्ञासा हुई कि डू यू ड्रिंक मिल्क, तुम दूध पीते हो? तो कहा कि यस। मैं पूछा कि फ्रॉम वेयर मिल्क कम्स, कहां से दूध आता है, दूध कैसे बनता है। मैंने पूछा कि दूध कैसे बनता है, कहां से आया है? तो कहा कि स्टोर से, फ्रॉम स्टोर। वहां बड़े बड़े स्टोर होते हैं, उसमें से दूध लाते हैं, दुकान से, तो स्टोर से। तो दूध स्टोर में कैसे आता है ये मैं नहीं जानता, आई डोंट नो फ्रॉम, वो कहां से मंगाते हैं हम नहीं जानते, दूध कैसे बनता है हम नहीं जानते। उसको ये पता नहीं था कि गाय से या भैंस से दूध बनता है। इसी तरह की रवैया रही, ये बताया कि ये चीज इस कंपनी ने बनाया है, इसको इसने बनाया है, इसको इसने बनाया है, इसको इसने बनाया है, तो लोगों को ज्ञान का खाक होगा। शुरू से ही सिखाया जा रहा है कि ये बना, थर्ड क्लास की भाषा बात, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, प्रशास्त्र कहता है कि सब कुछ भगवान ने बनाया है। यहां तक जो कहते हैं कि हम बनाए हैं, उनको भी भगवान बनाए उनको भी भगवान बनाए हैं, और भगवान के द्वारा दी गई वस्तु को ही रूपांतरित कर रहे हैं। मान लीजिए कोई रोटी बना करके बेच रहा है, तो रोटी आटा से बना, और आटा गेहूं से, गेहूं कहां से आया, वो कोई भी कंपनी के मालिक के देह में गेहूं उत्पन्न नहीं होता है ना, लेकिन वो लिखेंगे शक्ति भोग आटा, तो ये कंपनी ही चलाती है। शक्ति भोग का वास्तव में अर्थ है दुर्गा जी जिसको खाती है, और ये शब्द कैसे चला, ये कंपटीशन में विष्णु भोग एक चावल का नाम है, नाम है विष्णु भोग, तो जो कुछ भी हो लेकिन नाम कितना अच्छा है। तो उस पर कुछ शक्तों के अपनी अपनी भाषा है, वो शक्ति भोग आता है ऐसे चलाते हैं। वास्तव में सरकार की इस पर दृष्टि होनी चाहिए, लेकिन सरकार खुद ही कृष्ण कॉन्शियस न हो तो क्या कहा जाए, कोई भगवत भक्त न हो तो कैसे सुधार हो। प्रत्येक भाषा में, व्यवहार में भगवान का नाम आना चाहिए। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रस्तदा, सारी भूमि मेरी प्रकृति है, मेरी उपज है, और उसमें चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे एशिया कुछ भी हो, एक एक इंच जमीन भगवान की है। और ऐसे कॉमन सेंस भी व्यक्ति को हो तो समझ जाएगा कि वास्तव में भगवान की सृष्टि है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सृष्टि नहीं किया, जो आए वो खाली हाथ आए, है ना, हाथ में कुछ लेकर के आए, और जाएंगे भी तो खाली हाथ ही जाएंगे, ये भी नहीं कुछ बटोर करके और कह दे कि हमारे देह में कुछ चीज बांध देना, और बांध भी दिया गया तो यहीं पर जल जाएगा चीता पर, वहीं रह जाएगा, यहां से कुछ ले करके नहीं जा सकते, कुछ ले करके आए नहीं, पर जीवन और मरण के बीच में मेरा है, मेरा है, मेरा है, फलाने नेता की जाए, इनकी जाए, उनकी जाए, इनकी जाए, ओ अरे राम राम करो, हरे कृष्ण करो, असली जितना ये है, ये जमीन हमारी है, ये जमीन हमारी है, हमारी है, ये है वो, ये बहुत बड़ा अज्ञान है। भगवान की सब भूमि है, सबको यहां जीने का अधिकार है, भगवान बनाए हैं वास्तव में हम ही लोगों के लिए, लेकिन ये सावधान तो रहना चाहिए ना कि भगवान का है, भगवान का है, ठीक से हम, ठीक है जमीन का यूज करें, जिए, खाएं मिल करके। जैसे एक परिवार में 10 आदमी हैं, तो हम लोग तो पूरे मानव जाति एक परिवार के हैं, लेकिन इतना विषमता लोगों ने किया, इतना कि अब अमेरिका आदि देशों को देखिए, इतना भूखंड है, इतना बड़ा, वहां घास हम देखते हैं तो तरी बाप रे, कितना घास बेकार हो जाता है, पर वे लोग जाने नहीं देते हैं, वीसा लेना पड़ेगा,
और अलाउ करते हैं कि आप हमारे यहां आइए तब जाते हैं, वो भी एक आध आदमी, मान जो हमारा है, उनका ज्ञान देखो सोचते हैं हमारा है, भगवान की ही सृष्टि है, अन्य मनुष्य भगवान के ही हैं, जीव गौएं आदि भगवान की हैं, लेकिन भगवान की उस भूमि पर वे नहीं जा सकते, एक जगह गरीबी में जैसे तैसे रहें रहें, ये मनुष्यों की बुद्धि है। तो इसका कारण क्या है? अज्ञान कारण है कि भगवान की सृष्टि नहीं समझ रहे हैं, अपने को मालिक समझते हैं, अपने को कर्ता धर्ता समझते हैं। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी विषमता कैसे होगी? अगर ये भावना रहेगी कि सभी भगवान के हैं, भगवान की संतान है, तो व्यक्ति अपने धन को बांटेगा, अपना भाई समझेगा कि भाई ये भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे, ये भी सुखी रहे। तो ये जो ईश्वर को नहीं मानने की धारणा आज के युग में है, इसने सारे मानव जाति को नष्ट किया है। ये सारी बेईमानी, काम, क्रोध, लोभ आदि बढ़ा है भी ईश्वर को नहीं मानने से। एक व्यक्ति ऐसा कहा कि अगर भगवान को मानेंगे तो डर के मारे ऐसे कुछ काम ही नहीं करेंगे। ऐसे ईश्वर को मानने से डर लगता है। तो नहीं मानोगे तो निर्भय रहोगे, इससे काम होगा? कोई ये मान ले कि जमराज जी हैं ही नहीं, हमको नहीं मरना पड़ेगा, ऐसा सोचने से थोड़े होगा कि नहीं मरना पड़ेगा। ईश्वर को नहीं मानने में बहुत बड़ा दोष है, अनेक हानि है, और ईश्वर को मानने से आदमी कंट्रोल में रहता है, वास्तव में वो अच्छा कर्म करता है, बुरा कर्म नहीं करता है ईश्वर के डर से। और ईश्वर तो है ही, कोई डरे या ना डरे, वो है भगवान वास्तव में संसार में। तो भगवान कृष्ण यहां कह रहे हैं कि पिताजी, हम लोगों का कोई नगर नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई स्थान नहीं है, देश नहीं है, हम लोग तो वन में और पहाड़ में रहने वाले हैं। अतः हमारे लिए, हमारे जीवन में अगर सबसे कोई सहायक है तो वन है और पहाड़ है। वन सुरक्षित रहेगा, पहाड़ सुरक्षित रहेगा, तो फिर कम से कम वनवासी जीवों का तो बहुत अच्छा से पालन होता रहे। कई जगह पहाड़ों को लोग बुरी तरह से तोड़ रहे हैं, कई तरह से तोड़ रहे हैं। उनसे पूछा जाता है क्यों तोड़ रहे हैं, हम कैसे जिएंगे? जिएंगे इसे पत्थर को बेच करके हम जीते हैं, ये करते हैं। वृंदावन में, ब्रज में कई पहाड़ तोड़ रहे हैं लोग, जो भगवान की लीला भूमि है, भगवान जिन पहाड़ों में खेले हैं, गाय चराए हैं, घूमे हैं। तो ये जब पूछा गया कि नहीं इसको मत तोड़ो, क्यों तोड़ते हैं, तो कहते हैं कि हम कैसे जिएंगे, हमारा कैसे परिवार चलेगा। पहाड़ रहेगा, उसमें लकड़ी होगी, पेड़ पौधे होंगे, घास होगी, गौएं चरेंगी, बकरियां चरेंगी, भैंस चरेंगी, तो ये जुग जुग तक जीविका का साधन रहेगा। लेकिन तोड़ दोगे तो कितना देर तक, केवल आगे भी जनता रहेगी कि नहीं, आगे हमारा परिवार होगा कि नहीं? तो अभी हम पहाड़ तोड़ ताड़ करके बेच दें, सारे शहरों में सप्लाई कर दें, कंक्रीट के भवन बने, रोड बने, ठीक है, तुमको पैसा मिला, तो बस इसी पीढ़ी तक मिलेगा ना, इसके बाद पहाड़ नहीं रहेगा तो क्या होगा? पहाड़ को बेच करके, पत्थर को बेच करके और इस तरह से काम करना, लकड़ी लेने का अधिकार है, लेकिन पेड़ अपने आप सूख जाए तो उसको तो लेने का अधिकार है, उनको ले, लेकिन हरे पेड़ काटते जाएंगे तो अगली पीढ़ी मरेगी कि नहीं, उनके लिए क्या सोच रहे हैं? सभी हरे पेड़ काटते जाएंगे तो एक तो ये पाप है, नरक में इसको भी गिरना पड़ेगा और भावी पीढ़ी को अभाव का दुख देखना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि वन और शैल ही हमारी जीविका है, हमारे आधार हैं, गौएं आधार है, तो यही हमारे लिए जोगक्षेम का काम करते हैं, हमारे देवता यही है, हम लोग वनवासी हैं, वास्तव में भगवान यहां पर वनवासी बनकर के लीला कर रहे हैं। नित्यम वनौषस्तात्व, अतः चूंकि वन और पहाड़ हमारे जीविका है, हम इनसे जी रहे हैं, तो यही हमारे देवता हैं। तस्मात् गवाम ब्राह्मणानाम अदृष्टारभ्यताम मख य इंद्र जाग संभारास तैरयम साध्यते मख साध्यता मख। तस्मात् इसलिए आजीव्यत्वात् ये हमारे जीविका के साधन, हम जी रहे हैं वन और पहाड़ से और गौएं से और ब्राह्मणों से। इसमें ब्राह्मणों को ले रहे हैं क्योंकि बिना ज्ञान के जीवन ठीक से चलता नहीं है, तो ब्राह्मणों को भी भगवान ले रहे हैं। इसलिए ब्राह्मणों का अद्रेह और पर्वत का मख, गवाम ब्राह्मणानाम और अदृष्ट, इसलिए हम लोग गवाम गौओं का, ब्राह्मणों का और अद्री का, गिरिराज गोवर्धन का मख आरभ देता हूं, आरंभ किया जाए। अग्नि का नाम फिर बाद में भगवान लेंगे। तो ब्राह्मण यज्ञ, पर्वत यज्ञ और गो यज्ञ, ये भगवान करने को कह रहे हैं। हम लोग ये मख आरभ्यता, पहले तो डिनाई किए कि इंद्र की पूजा नहीं करनी है, क्या करनी है, अब पॉजिटिव बात बोल रहे हैं, मख करना है, यज्ञ करना है। गवाम ब्राह्मणा नाम अदृष्ट आरभ्यता, अब यज्ञ आरंभ किया जाए, किया जाए, ब्राह्मणों का यज्ञ, गौओं का यज्ञ और पर्वत का यज्ञ, मतलब पर्वत की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा और गौओं की पूजा। तस्मात् गवाम ब्राह्मणा नाम अदृष्टारभ्यता, अद्रेह अद्री हम लोगों के गौओं के लिए तृण देता है, जल देता है, पर्वत श्री गोवर्धन हमारी वृत्ति देता है, हमको जिला रहा है, हमारे लिए यही ईश्वर है, यही भगवान है। अतः गोवर्धन की पूजा की जाए, गौओं की पूजा की जाए और ब्राह्मणों की पूजा की जाए। तो कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया कि इतना सामान जुटा हुआ है, इंद्र की पूजा करें कि इनकी पूजा करें, और इंद्र की पूजा हम करेंगे तो फिर ठीक है, तुम कहते हो तो तुम्हारी बात भी मान लेते हैं, लेकिन हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, इस सामान से देवता की पूजा करने दो, फिर हम आगे इसी सामान से करेंगे। तो कहते हैं नहीं, यह इंद्र जाग संभारा तैरयम साध्यता, जो इंद्र की, इंद्र के यज्ञ के लिए सामान जुटाया गया है उसी से यज्ञ किया जाए, नया सामान जुटाने की कोई जरूरत नहीं। ये रोज रोज इतना झंझट कौन करे, भगवान और सुविधा दे रहे हैं, जो सामान ऑलरेडी जुटा हुआ है, इंद्र जाग संभारा, इंद्र यज्ञ को पूरा करने के जो भी साधन, जो भी वस्तुएं जुटी हुई हैं, तई अयम साध्यता मख, उन्हीं वस्तुओं से यह यज्ञ पूरा किया जाए। भगवान गोपों को एक छूट दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि यज्ञ कितना आसान है, सामान जुटा हुआ है, बस उसी से कर लेना है, नया आयोजन नहीं करना है, नया खर्च नहीं करना है, इससे करना है। तब कुछ लोगों ने जिज्ञासा किया, तो इसमें क्या क्या यज्ञ में होना चाहिए, ठीक है इन वस्तुओं से यज्ञ होगा, फिर और बोलो क्या 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 होना चाहिए। तो भगवान अब यज्ञ चूंकि ये चालू कर रहे हैं, ऐसा यज्ञ कभी हुआ नहीं था, देवता की पूजा होती थी, अरे गौ ब्राह्मण और पर्वत और आग अग्नि चार की पूजा करने के लिए कहे। देखिए स्वयं भगवान यज्ञ की रूपरेखा बना रहे हैं, क्या क्या किया जाए। पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसादय संयावा पूप सस्कुल्य सर्वदोहस्त गृहताम। पच्यंताम विविधा पाका, बहुत पकवान बनाइए, बनने दीजिए बहुत पकवान। विविधा पाका, विविधा मन षटरस भोजन, अनेक प्रकार की मिठाई, अनेक प्रकार के पुआ पूरी खीर ये सब बने, और सब्जियां तो भगवान बता रहे हैं सबसे पहले क्या बने। पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसाद, सूप जो तरकारी सब्जी को सूप कहते हैं, सूप अंत में बनना चाहिए, क्योंकि अगर सब्जी देर तक रख दी जाती है तो उसमें गंध आ जाती है, अच्छा नहीं लगता है, जल्दी बिगड़ने का डर रहता है। तो भगवान पाक विद्या भी जानते हैं, ये सब बता रहे हैं। सूप अंत में बनना चाहिए, सुपानता सब्जियां सब अंत में, और पायसादय और पायस खीर अंत में बनना चाहिए, पायस आदि नहीं शुरू में बनना चाहिए, आदय पायस पायस का अर्थ होता है ज्यादा दूध में थोड़ा चावल डाल करके और धीरे धीरे बहुत देर तक पकाना चाहिए, और इसको ठंडा खाने का विधान है, पायस को ठंडा खाना चाहिए। तो पहले बनाया जाएगा तब न सिद्ध होगा, धीरे धीरे बहुत ज्यादा दूध में चावल कम, और चावल में उसको पकाते पकाते दूध में बिल्कुल मिल जाए, इसको पायस कहते हैं। ये नहीं केवल दूध में उसको पका दिया जाए, जैसे जल में पकाते हैं वैसे पका दिया, ऐसे नहीं, पायस उसको नहीं कहते हैं। श्री सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं पायसादय पायस ही बहु दुग्धे अल्पियांश तंडुला दत्वा अल्पौ अग्नौ अल्प अग्नौ एव पच्यमाना महता काले न पच्यन्ते इति पायसम आदौ कर्तव्य। दूध ज्यादा रहे और चावल के कण बहुत कम रहे, चावल बहुत कम, उसको मंद अग्नि पर पकाया जाता है धीरे 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 धीरे, तो महता काले न पच्यन्ते ज्यादा समय लेता है बनने में। इधर क्या करते हैं, सवेरे दूध इकट्ठा करके दोपहर को चलाते हैं तो जलता रहता है पायस, खीर जलता रहता है, वो नहीं, ऐसे उचित नहीं होता। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले पकाना चाहिए, लाखों लोगों के लिए जरूरत है वहां भोजन देने की प्रसाद, तो पायसाद। इसी तरह से हलवा भी, हलवा जो संयाव कहते हैं, हलवा पकाना चाहिए पहले, और लेकिन बहुत मंद आंच में पकाना चाहिए, नहीं तो जल जाता है, बहुत मंद आंच में धीरे 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 पका करके रखना, तो बहुत ज्यादा पहले नहीं, खीर को तो पहले बनाना चाहिए, और मिठाइयां तो 5 दिन पहले भी बना सकते हैं पायसाद, क्योंकि आज मान लीजिए भोजन देना है, भगवान जब बोल रहे हैं तो वो दीपावली को बोल रहे हैं, यदि जिस दिन भोजन देना है उसी दिन बनाना चालू किए तो भोजन कराना है 12 बजे तो बच जाएगा 7-8 और सब बेढंगा होगा, है ना, भोजन करते समय न प्रकाश रहेगा न कुछ नहीं, ऐसे अंधकार में पाओ। भगवान सिस्टमेटिक, चूंकि ये यज्ञ वास्तव में कृष्ण यज्ञ है, यही इसके आयोजक हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो सब चीज बता रहे हैं। पायसाद मुख्य मुख्य आइटम क्या बनना चाहिए, ज्यादा संयाव आपूप और सस्कुल्य, हलवा बनना चाहिए संयाव, गोधूम चूर्ण से सूजी के हलवा भगवान कहते हैं। हलवा कैसे बनाया जाता है कि उसको घृत में पकाया जाता है, गेहूं के चूर्ण को धीरे 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 धीरे। इसको गुजरात में क्या कहते हैं, गेहूं के आटा नहीं, आटा से बड़ा दाना होता है उसको पका, लपसी कहते हैं, लपसी कहते हैं, ठीक है लपसी। तो वही भगवान बनाने को कह रहे हैं, यज्ञ हो रहा है ना तो इसमें खूब बनना चाहिए। संज्ञा आपूप, आपूप पुआ को, पुआ को आपूप कहते हैं, पुआ। तो पुआ गेहूं के आटे में गुड़ मिला करके और उसमें क्या क्या इलायची आदि डालते हैं और उसको घी में पकाना चाहिए। उस समय अब ये मत यूज कीजिए कि गो घृत, ये कहना ही अपराध है। तो गाय के घी के अलावा घी नहीं था, तो घी मतलब गो घृत, तो उसे घी में पकाया जाता है पूप, और कुछ मोटा होता है इसे पुआ पकाया जाता है। और पुआ पका करके एक और भी माल पुआ उसको कहते हैं, एक पूप हुआ और माल पुआ को फिर मीठे सीरा में पकाते हैं, थोड़ा मीठा एकदम होता है। दो तरह का पुआ है, पुआ और माल पुआ, ये सब बनना चाहिए। और सस्कुल्या, सस्कुल्या का अर्थ है गेहूं के आटे की बिल्कुल बर्तुलाकार, सनातन को स्वामी जी लिखेंगे बर्तुलाकार गोला करके और कड़ाही में उसे छाना, छानना चाहिए। अच्छा, और भी कम आंच पर, कम आंच पर छानना चाहिए धीरे 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 धीरे। तो ये पूरी बननी चाहिए। तो लपसी और पुआ पूरी, कुछ वैष्णव लोग सस्कुली का अर्थ करते हैं जिलेबी, सस्कुली। तो सस्कुली भी पहले बनाया जाता है, सस्कुली पूरी जिलेबी बनाने में देर लगती है। भगवान ये सब आइटम का नाम ले रहे हैं कि ये सब की ज्यादा बनना चाहिए। संयाव पुआ और सस्कुली सर्वदोहस्त गृहता, और जितना दूध है आजकल का या कल का जैसे तैसे वर्तमान दूध है उसको गृहता सब इकट्ठा किया जाए। और इसके द्वारा भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि आज एकाध दिन दूध बेचा ना जाए। बेचना स्वाभाविक था गोपों के लिए दूध, लेकिन नहीं अब बेचना नहीं, जितना दूध है संग्रह किया जाए सर्व गृहता। केवल बछड़ों के पीने के लिए अलाउ किया जाए कुछ दूध हो पिए और बाकी जो दुहा जाए वो सब इकट्ठा किया जाए। अभी ये चीज हम लोग अपने आंखों से देखे हैं कि सारा दूध किस तरह से किसी फेस्टिवल में विवाह में इकट्ठा किया जाता था अपने संबंधियों के यहां से, और सभी लोग दूध दही लेकर के ही आते थे। देखते देखते जमाना बदल गया, वास्तव में बुरा युग आ गया। दूध शुद्ध मिलता नहीं है, मिलता भी है तो खरीदना पड़ता है। कोई ऐसा फेस्टिवल गांव में कहीं हो रहा है तो पहले यज्ञ में या विवाह आदि में खरीदना नहीं पड़ता था, दूध अपने आप मिल जाता था। लोग कभी कभी तो स्वयं ही पहुंचा देते थे दूध दुह करके, और अन्यथा जा करके कोई लेता था। लेकिन ये खरीदने का कब से चालू हो गया धीरे धीरे पता नहीं। यज्ञ के लिए भी और यहां तक कि विवाह आदि के लिए भी, किसी के यहां वर का तिलक है कुछ है तो अपने आप मिल जाता था। ये तो 5000 वर्ष पहले भगवान बोल रहे हैं। तो सर्वदोहस्त गृहता, सारा दूध इकट्ठा किया जाए, क्योंकि बहुत विशाल अमाउंट में सब खीर आदि बनाना था और दही बनाना था। कुछ को दही जमाया जाएगा, कुछ को ही बनाया जाएगा। वैसे दही जमाने के लिए भगवान अलग अलग ही कहे कि सब अपने अपने घर में दही जमा करके लाओ, पायस बनाने के लिए दूध भंडार क्षीर सागर आना चाहिए। तो ये सारे दूध को इकट्ठा कीजिए और इस तरह से पकवान बनाइए। ये तो यहां भगवान ने सूचना दी, लेकिन एक एक चीज कितना आटा लगना चाहिए, कितना बेसन लगना चाहिए, कितना दूध लगना चाहिए, वो सब बताए होंगे। ये होना चाहिए, होना चाहिए। वो यज्ञ स्वयं भगवान ही कर रहे थे, कृष्ण कर रहे थे। अच्छा, हुयंता मग्नय सम्यग् ब्राह्मण ब्रह्मवादी भी, और कहे कि अग्नियों में हवन करना चाहिए खूब, सम्यक सम्यक हवन करना चाहिए, घी अच्छा से जलना चाहिए। और एक बताए किसके द्वारा हवन करना है, तो ब्राह्मण ही ब्रह्मवाद भी, जो वेद को जानते हैं ठीक से, वेद के मंत्र आदि पढ़ते हैं ठीक से, आचरण भी है जिनका वेद के अनुसार, ऐसे ब्राह्मणों के द्वारा अग्नय हुयंताम अग्नियों में हवन किया जाए। बहुत तरह से अग्नि देवता को देने का मतलब है कि सभी देवताओं को देना है, अग्निदेव भगवान के मुख है, हवन किया जाए, हवन सम्यक, सम्यक का अर्थ खूब अच्छी तरह से हवन करना चाहिए, परम श्रद्धा से, शुद्ध ढंग से। और अन्नम बहुविधम ते भो देयम धेनु दक्षिणा, और अन्न मैंने भोजन, ब्राह्मणों को बहुत प्रकार का भोजन दिया जाए, खटरस भोजन, छह प्रकार का भोजन होता है, मधुर मधुर एक भोजन है, मधुर और लवण, नमकीन, और इसके साथ साथ कषाय, अम्ल, अम्ल अम्ल का मतलब होता है यहां चार अचार खट्टा, वो भी रहना चाहिए। कोई सब मिलाकर के छह रस होते हैं, और एक एक रस में हजारों हजारों आइटम बन सकते हैं। जैसे अम्ल है, अचार है, तो नींबू का अचार, अदरक का अचार, आम का अचार, कई प्रकार के ऐसे खट्टे पदार्थ उनका अचार बने, भगवान ये सब कह रहे हैं। तो बहुविध भोजन कराना है ब्राह्मणों को, बहुविध में बहुत असम, बहुत स्वादिष्ट, उन ब्राह्मणों को जो यज्ञ कराएंगे उनके लिए कह रहे हैं। हुयंता मग्नय सम्यग् ब्राह्मणे ब्रह्मवाद भी, अन्नम बहुविधम तेभ्यो, यज्ञ कराने वाले तेभ्यो ब्राह्मणों को देयम वह मन जुष्मा भी, आप लोगों के द्वारा देना चाहिए गौएं, धेनु, धेनु का अर्थ होता है जो दूध दे रही है गाय, और दक्षिणा, और ऊपर से दक्षिणा नगर, भगवान ये सब बता रहे हैं। ये ब्राह्मणों को दक्षिणा देना है गौएं और नगद पैसा, अथवा धेनु ही दक्षिणा, ये अर्थ हुआ दोनों दे चाहे मतलब गाय ही जिनके लिए दक्षिणा है ऐसा लेकिन भगवान ऐसा थोड़े बोलेंगे केवल गाय दीजिए, भगवान कहे कि उनको पैसा भी दिया जाए, दक्षिणा दिया जाए, गौवे दी जाए, और अन्यभ्य च, और दूसरे ब्राह्मणों को भी, यहां अर्थ वहां तेभ्य से अलग हो रहा है, तेभ्य अन्यभ्य, अन्यभ्य अन्य ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए खूब, ऐसा नहीं कोई यज्ञ कराए है केवल वही खाए, अन्य ब्राह्मणों को भी खूब खिलाना चाहिए। और यहां तक कि अस्वचंडाल पतितेभ्य, कुत्तों को, चंडालों को और पतितों को भी खिलाना चाहिए, पतित है उनको भी खिलाना चाहिए। पतित मतलब बहुत खराब कर्म करने वाले गिरे हुए, चाहे कोई सन्यासी है गिर गया है, उसको भी खिलाना चाहिए, दया का पात्र है पतित, पतित इस पतित कहने पर कुछ और ही स्मरण हो रहा है, पतित जो अपने आश्रम से गिर गया है, चाहे बुरा कर्म कर रहा है, उसको पतित कहते हैं। तो पतित हो या चंडाल, यहां तक आस्वा मैंने तक, पर्यंत स्व माने कुत्ता, जितने भी लोग आवे अब हमने कुत्ते तक को, चंडाल तक को और पति तक को खिलाए यथार्हता यथा योग्य, तो और सबका तो कहना ही क्या है। अब गोपों को खिलाना है और सारे लोग भरे पड़े सबको खिलाना है तो करना ही है, यहां तक कि कुत्तों को, चंडालों को, पतितों को भी खिलाना चाहिए, क्योंकि सबको सबको एक ही आसन पर एक ही चीज खिलाना ही जथा रहता जथा योग्य खिलाना चाहिए सबको। इसका मतलब भगवान का आयोजन है, बनने दीजिए पकवान खूब ठाट से। यवसम च गवाम दत्वा, और गौओं को जवसम गवतम दत्वा, जवस दी, जवस मैंने गवत, उसी को हम लोग भोजपुरी में गवत कहते हैं। गौओं को हरी हरी तृण देना है, यही उनकी पूजा है, वे भी खाएं, ब्राह्मण लोग खाएं पुआ पूरी जो खाना है, और गौएं हरी हरी घास खाएंगी। जवसम च गवाम दत्वा गिरे दियताम बलि, और पर्वतराज श्री गोवर्धन जी को बलि देना है, बलि का मतलब होता है भेंट उपहार, चंदन आदि से पूजा करनी है, धूप आदि से आरती करनी है, कई तरह से, और बलि का अर्थ है भोजन, खूब उपहार देना है, खिलाना है इनको, गिरिराज गोवर्धन को खिलाना है। तो गौओं को गवत दे करके, पर्वतराज गोवर्धन जी को भोग लगा करके, इसके बाद स्वलंकृता भुक्तवंत, भुक्तवंत को पहले लिखना पड़ेगा, चाहे ठीक है स्वलंकृता, तो सब लोग अपना अलंकार खूब करें, जितना गहना है सब पहन लिया जाए। भगवान ने कहा सुअलंकृता, अपने को सवार करके तिलक आदि करके और गहना पहन करके और खा करके और चंदन आदि का लेप करके और खूब सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके सब लोग परिक्रमा करें। प्रदक्षिणम च कुरुता गो विप्रानल पर्वता, गौओं की परिक्रमा करें, ब्राह्मणों की परिक्रमा करें, अग्नि देव की परिक्रमा करें मतलब यज्ञ कुंड की, और पर्वत की गिरिराज गोवर्धन की, चार की परिक्रमा करने। परिक्रमा करने के पहले भगवान कहते हैं खूब अच्छा से खा लिया, खा करके प्रसाद खा करके भुक्तवंत कृत भोजन है। यानी चलते चलते बीच रास्ते में अब कुछ खरीदो कुछ पाओ, एक करो, आजकल ऐसे करते हैं गिरिराज गोवर्धन में, और बहुत सदाचार से करना चाहिए, भगवान की पूजा है, पर कुछ दुष्ट लोग तो चलते चलते खैनी खाते रहते हैं, ये करते रहते हैं, सिगरेट पीते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि वे परिक्रमा जो कर रहे हैं वो और उल्टा फल होगा, अपराध कर रहे हैं, उस परिक्रमा का कोई लाभ नहीं है। कहीं भी थूको, कहीं भी पेशाब करो उस देवता को, देवता के सामने, गिरिराज के सामने, और कुछ प्लास्टिक का डिब्बा फेंको, ये करो ये करो, वो पापी लोग जानते नहीं, जानते हाँ गिरिराज कृपा करेंगे करेंगे करेंगे, नहीं ऐसे कृपा नहीं होती है, वो देवता है, तो देवता की पूजा में सदाचार का पालन होना चाहिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो भगवान कह रहे स्वलंकृता, खूब सज धज करके रहे हो जाए, भुक्तवंत भोजन कर ले, सु अनुलिप्ता खूब अच्छा से अनुलेप करें चंदन आदि अपने शरीर के अंगों में, सुवास कहते सुंदर सुंदर कपड़ा, नया नया साफ बिल्कुल पहन करके, सबको कह रहा है स्त्री हो चाहे पुरुष सबको, तीन वस्तुओं में सु लगा रहे, सु कहते सुष्ठु बहुत अच्छा, सु अलंकृता सु अनुलिप्ता सुवास स, भोजन में सु नहीं लगाए, अति भोजन नहीं करना चाहिए, हाँ काम भर खा ले, इसलिए भुक्त बनता है, खा ले जिससे कि पीड़ा न हो, भूख की ज्वाला न सताए, स्वलंकृता भुक्तवंत सोनु लिप्ता सुवास प्रदक्षिणम च कुरुता और प्रदक्षिणा कीजिए। अच्छा, और यज्ञ में पहले हुआ होगा इंद्र के लिए यज्ञ, लेकिन ये सब परिक्रमाएं नहीं होती थी। भगवान नया चालू कर रहे हैं तो इसीलिए बार बार डायरेक्शन दे रहे हैं, प्रदक्षिणम च कुरुता, प्रदक्षिणा करो, परिक्रमा करो। गो विप्राणम पर्वत, गौओं की परिक्रमा, गौएं जहां हैं तो उनके चारों तरफ परिक्रमा करना, घूमना, उनके चरण धूलि को लेना और विप्र ब्राह्मणों को प्रणाम करके उनकी परिक्रमा। अनल पर्वतान, यहां पर ब्राह्मणों से तात्पर्य ब्राह्मण और वैष्णव हुआ है, ये बात सावधान रखना, सावधानी से सुनना चाहिए, सब शास्त्रों में लिखा है। विप्र का अर्थ ही हुआ कि जो वेद शास्त्र के ज्ञाता है, वैष्णव है, तो वैष्णव और ब्राह्मणों को, और अनल अग्निदेव को और पर्वतान गिरिराज गोवर्धन जी को परिक्रमा दीजिए, सब परिक्रमा कीजिए। तो भगवान ने सब डायरेक्शन बना दिया, जो नेटवर्क कर दिया, ये करना है, ये करना है, ये करना है, मेनू भी बता दिए क्या क्या बनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे और परिक्रमा करना है। एतन मम मतम ताप क्रियताम यदि रोचते अयम गो ग्राह्मणाद्रीण मह्यम च दैतो मख। हे ताप, हे पिताजी, इस तरह से अग्नि, गौ, ब्राह्मण और गिरिराज गोवर्धन की पूजा करना, एतन मम मतम तात, हे तात, हे पिताजी, संबोधन करके कहना, ये मेरा मत है, ये मेरा मत। और तो इसका अर्थ हुआ कि तो तुम कहां से बोले हो, शास्त्र से बोले हो कि लोक लोक मत से बोले हो। जो भी है पिताजी, ये हमारे मन में यही आता है, हमको यही अच्छा लगता है, लेकिन हम आप लोगों को फोर्स नहीं करेंगे करने के लिए। क्रियताम, आप कीजिए यदि रोचते, यदि आपको रुचिकर हो, आपको अच्छा लगे तो आप लोग कीजिए, ना आप लोगों को अच्छा ना लगे तो मत कीजिए, लेकिन हमको ये बहुत अच्छा लगता है। भगवान ऐसे बोल रहे, हमको ये बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को कोई दबाव नहीं है, आप लोगों को अच्छा लगे तो कीजिए। यह भी बोलने की कला है, जब आदमी अपनी अनिच्छा व्यक्त कर देता है या अपनी उदासीनता, तो दूसरा आदमी प्रभावित होता है। ये कोई खास मोटिव इसका नहीं है, ऐसे इसको अच्छा लगता है, ये हमको अच्छा लगता है, यही मेरा मत है, लेकिन आप लोग कीजिए यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो। केवल हमको अच्छा लग रहा है इसलिए मत कीजिए, लेकिन अगर हमसे पूछेंगे क्या करना चाहिए तो हम तो यही कहेंगे यही करना चाहिए, परंतु फिर भी आप लोगों की जो इच्छा हो। क्रियताम यदि रोचित, क्रियताम एक वचन लगा रहे हैं, नंद बाबा के लिए कह रहे हैं, पिताजी आपको अच्छा लगे तो कीजिए, और फिर कह दिए, अयम गो ब्राह्मणाद्रीण मह्यम च दैतो मख। यह यज्ञ गौओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए और पर्वत के लिए बहुत प्रिय है, दैत है, और मह्यम से मेरे लिए भी बहुत दैत, अथवा अयम मख, यह यज्ञ, किसका यज्ञ, गो ब्राह्मणाद्रीण, गौओं ब्राह्मणों और पर्वत के लिए किया गया यह यज्ञ, मह्यम च दैत, मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कारण मुझे ये यज्ञ बहुत प्रिय है। हितार्थे चतुर्थी, भगवान यहां तक कह दिए कि इसी में मेरा हित है, मेरा बहुत बड़ा उपकार होगा इस यज्ञ को करने से, मेरा हित इसमें है, मह्यम से मेरे लिए इसको कीजिए। तो नंद बाबू से कहे कि यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो हमारे लिए इस यज्ञ को कीजिए। भगवान को बहुत शंका हो रही थी कि इनकी श्रद्धा को हटा देना और नया यज्ञ कराना, वो भी नदी पहाड़ पूजवाना, ये लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, इसीलिए वो बता रहे कि हमको बहुत प्रिय है, हमारा इससे हित होगा, हमारे सुख के लिए इसको कीजिए। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कालात्मना भगवता शक दर्पम जिघांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साध्व गृहणम तत्व वच। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण काल के भी प्रवर्तक, काल के भी काल है, कालात्मना काल के आत्मा, श्री कृष्ण काल के भी प्रेरक हैं, काल के भी काल हैं, और वे स्वयं भगवान हैं। वे चाहते थे शक्ल दर्प की जिघांसा, हत्या चाहते थे कि इंद्र का अभिमान दूर हो जाए, तो कोई द्रोह से नहीं, इंद्र के प्रति प्रेम होने से भगवान चाहते थे कि इंद्र में ये लोग नहीं होना चाहिए। जैसे किसी को अपने स्वजन को बहुत बड़ा रोग हो गया है, तो कोई दूसरा स्वजन ही अगर वैद्य है तो उसको दवा देगा, दवा भले कठोर लगे, तो भगवान किसी के वैरी तो हो ही नहीं सकते हैं, इंद्र के प्रति भी उनका प्रेम है, इसीलिए इंद्र में यह दोष वे नहीं देखना चाहते थे। सक दर्प, दर्प का अर्थ अभिमान, मैं बड़ा हूं, मैं ईश्वर हूं, इस प्रकार का घमंड, मैं पूज्य हूं, ऐसा भाव ठीक नहीं था। तो भगवान इसकी जिघांसा चाहते थे, जिघांसा माने हत्या, किसकी, इंद्र के अभिमान की हत्या है, इंद्र का अभिमान वे नष्ट करना चाहते थे, और इसी अभिप्राय से वे प्रवचन किए, प्रोक्तम निशम्य नंदाद्या साधु गृहणंत तद वचन। तो भगवान के इस वचन को, उपदेश को निशम्य सुनकर नंदाद्या, नंदादि गोपगण साधु अगृहणंत, प्रेम से दिल खोल करके और पूरा पूरा स्वीकार कर ले, ठीक है ठीक है, सबने कहा कृष्ण जो तुम चाहते हो वही होगा, ठीक है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, सब डायरेक्शन हो ही गया था, कहां से कैसे चालू करें, कैसे पकावें, क्या करें, हवन करें, परिक्रमा करें, सब। तो तद वचः, तस्य कृष्णस्य वचः वचनम अगृहणंत, ग्रहण कर लिए, ठीक हम करेंगे, गोप लोग स्वीकार कर लिए। सूरदास जी ने बड़े विस्तार से इसको लिखा है, हमें तो गाने नहीं आता है लेकिन कुछ गाना चाहिए, दो अध्याय मुख्य है इसके, जो गोवर्धन पूजा पहले ग्रहण पृष्ठ, इंद्र पूजा का निवारण तो लगभग कर चुके हैं, कल तो हो चुका था, इसे तो सब लोग समझते ही होंगे, हम अनुवाद कर देते हैं। सभी ब्रजवासी घर घर से भोजन ला रहे थे, मतलब भोग ला रहे थे, और सबके घर पर बधाई के बाजे बज रहे थे, सारे ब्रज में उत्सव हो रहा था। सकट जोरी ले चले देव बलि, देवता के लिए उपहार, मतलब गिरिराज जी के लिए उपहार, भोजन लेकर के सब चल रहे थे, गाड़ियों पर लाद लाद करके गोकुल ब्रजवासी सब हिल मिल, ब्रजवासी सब मिलजुल करके गाड़ियों पर लाद लाद करके प्रसाद ला रहे थे, भोग ला रहे थे, क्या क्या दधिलवनी मधुसाज मिठाई, दही लवनी घी और कोई मिठाई नहीं, मिठाई बनाया हुआ कुछ ला रहे हैं, दधि लवनी, लवनी का कहते थे कि नमकीन लाए क्या कुछ, दधि नवनीत घी मधु साज मिठाई, कहां लगी कहां सवे बहुत है, ये सब बहुत मात्रा में, बहुत उत्कृष्ट कोटि के थे, घर घर पे पकवान चलाए, और घर घर से गाड़ियों पर लाद लाद करके पकवान लाए चलाए, निकसी गांव के गोयड़े आए, गांव के बाहर आए। गोयड़े समझते हैं जहां गौएं जुटती हैं, आड़ार जो भी है वहां आए सब लेकर। ब्रजवासी कहां जुड़े अपारा, ब्रजवासी बहुत जुड़ गए, सिंधु के समान जुटी थी जनता, कोई आर पार नहीं था। अभी भी कभी कभी ब्रज में इतना भीड़ होता है निकलना कठिन होता है कहीं कहीं। तो सारे ब्रजवासी जुटे थे, बहुत भारी संख्या हुई थी। सहस सकट चल नंद महर के, हजारों हजार बैलगाड़ी तो नंद बाबा की चली गिरिराज को भोग लगाने के लिए। और सकट कितने घर घर के, और कितने सकट थे घर घर से। सूरदास प्रभु महिमा सागर, सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण महिमा के समुद्र हैं, ऐश्वर्य के समुद्र हैं। ये परम मनोहर सबका दुख हरने वाले हरि प्रकट हुए हैं गोकुल में। इकयावत घरते चले धाई, कोई घर से दौड़ करके जा रहे हैं तो कोई घर में फिर जा रहा है लौट करके सामान लाने के लिए, ये छूट गया है छूट गया है, ओ लाना ओ लाना ओ चलो, ये सब हल्ला हो रहा है। इकयावत घरते चले धाई, एक जात फिर घर समुहाई, कोई घर से निकल करके चल रहा है तो कोई जा रहा है भीतर घर में लाने के लिए। इकटे रहते एक दौड़े आवत, कोई किसी को पुकार रहा है तो कोई दौड़ करके जा रहा है। एक गिरत एक लैत उठावत, कोई चलते चलते गिर जाता दूसरा उसको संभाल रहा है। माखन उखन ले जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं माखन गिर गया है तो फिसलन हो गई है और तो उससे कोई उठा रहा है। एक कहते आवहू रे भाई, कोई कहता रे दौड़ो रे भैया दौड़ो, ये बैल सकट को गिरा दिया है, सकट पर इतना माल लदा है कि गिरा दिया। हाँ जो भी है वजन ज्यादा है तो बैल देता है सकट गिराई। कौन काही को करे संहारे, कौन किसको संहारे, जहां तहां सब लोग पुकारे, को गावत को नृत्य आवे, कोई गाते हुए आ रहा है कोई नाचते हुए आ रहा है। श्याम सखन संग खेलत भावे, और श्याम सुंदर तो अपने सखाओं के साथ खेलते हुए चल रहे। सूरदास प्रभु सबके नायक, जो मन करे सो करिबे लायक, और इस समाज के नायक सूरदास के प्रभु हैं, मतलब भगवान कृष्ण हैं। जो मन करे सो करिबे लायक, इनके मन में जो आ रहा है वही करने लायक है, सबके मन में यही भाव है। साज श्रृंगार चली ब्रजनारी, और ब्रजनारियां श्रृंगार करके सज करके चली। ज्योति ने भीड़ भई अति भारी, ज्योति स्त्रियों की गोपियों की अति भारी भीड़ भई। जगमगात अंगनी प्रतिगहन, उनके अंग ही ऐसे परम सुंदर हैं, और फिर उन अंगों में प्रति अंग में गहना जगमगा रहा था। सबके भाव दरस हरि लहनो, और उन गोपियों का भाव क्या था, देवता सेवता कुछ नहीं समझ रही थी, श्याम सुंदर को देखने की लालसा थी बस, उनको देखने यही भाव उनका था। इहमिस देखन को शब्द आई, इसी बहाने जग के बहाने में श्री कृष्ण को देखने आई। देखत इकटक रूप कन्हाई, और एक टक देख रही थी। वह नहीं जानत देव पूजाई, देव पूजा जग आदि से उनको कोई मतलब नहीं था। केवल श्याम ही सौ लौ लाई, केवल श्याम सुंदर से लौ लगा है, प्रेम लगा है देखती हूं, तो उनको एक अच्छा अवसर मिला एक यज्ञ का। को मग जात कहां को बोलत, को मग जात कहां को बोलत, कौन रास्ता जा रहा है, कौन है, कहां किस गांव का है, क्या परिचय है, कोई किसी से नहीं पूछता था। नंद सुवन ते चित नहीं डोलत, यानी गोपियों में कौन किस घर की है, कहां जा रहे, कैसे करे, कोई पूछती नहीं थी, सबका चित नंद नंदन में लगा था, उनसे नहीं डोलता था। सूर भजय हरि जो जिहि भाव, मिलत ताहि प्रभु ते स्वभाव। सूरदास जी कहते हैं भगवान को जो जिस भाव से भजता है उसको उसी भाव से मिलते हैं। श्री गोपीजनों का भाव अलग था, प्रियतम का भाव तो वे उनको देख रहे थे। भगवान वैसे ही मिलते हैं उन भक्तों को, जे जथा माम प्रपद देते वो भी जाने। गोप नंद उपनंद गए तह गिरिगोवर्धन बड़े देवता। गोप नंद महाराज और उनके भाई उपनंद इनसे बड़े थे उपनंद जी, ये सब मिलकर के वहां गए जहां बड़े देवता श्री गोवर्धन जी हैं, मानसी गंगा पर गए पूजा करने के लिए, अन्यवर में गए कहां गए। शिखर देख सब रीझे मन मन, गिरिराज जी के शिखर को देख करके सब मन में बड़े प्रसन्न हुए। ग्वाल कहत आज ही असरज बन, आज बड़ा भारी असरज है। अति ऊंचो गिरिराज विराजत, कोटि मदन निरखत छविलाज। गिरिराज जी अति ऊंचे थे और बहुत सुंदर लग रहे थे, उनकी शोभा को देख करके करोड़ों करोड़ों कामदेव लज्जित हो रहे थे। पहुंचे सकटनी भरी भरी भोजन, सकटों में बैलगाड़ियों में भर भर करके भोजन सब पहुंचे। कौ आए कौ नहीं कहूं खोजन, कौ आए कौ नहीं कहूं खोजन, इसका मतलब क्या है? सब दौड़े और का कोई ध्यान नहीं था हमन में। तिनके काज अहीर पठाए, अच्छा जो नहीं आए थे उनके लिए अहीर भेजे। समाज में ऐसे ही अहीर भेजे, आदमी भेजे, नंद बाबा चाहे कोई भेजे, तो विलंब करो जल तुरंत धवाए। विलंब करो, विलंब मत करो, ये कहकर उनको दौड़ाए कि आपको नंद बाबा जो रहे हैं। आवत मार्ग गाये तीन को है, आवत मार्ग धाये तीन को, आतुर करी बोले नंद जिनको। हाँ मतलब जिनको बुलाए नाम रखे कि आओ आओ, तो दौड़ करके आया नंद महाराज के पास। तुरंत तल्लीवाई तीन ही तह आए, महर मन ही अति हर्ष बढ़ाए। तुमको बुला करके लाए, बड़े हर्षित हुए। सूरदास प्रभु तह अधिकारी, बुझत है पूजा प्रकारी। सूरदास के प्रभु मतलब भगवान कृष्ण वहां है, तभी सब पूजा के प्रकार बुझ रहे, क्या हो रहा है, क्या समान है, ये है, सब पूछते रहते हैं कृष्ण। आज जुड़े सब ब्रज के वासी, डेरा परे कोस चौरासी। सभी जुटे हैं ब्रजवासी, तो डेरा पूरे 84 कोस है। डेरा जो एक जगह जुटा है वो 84 कोस का है। एक फिरत कहूं ठौर न पावे, एते पर आनंद बढ़ावे। एक फिरता है इधर घूम रहा है, कहीं डेरा मिले, कहीं डेरा मिल ही नहीं रहा है, सब जुटे हैं, घेर लिए हैं कि फिर भी आनंद बढ़ा हुआ है। को काहू सो बैर न ताके, कोई किसी से बैर नहीं कर रहा है, कहां से आया, ये क्यों जगह घेर लिया, ये धक्का दे रहा है, ऐसा नहीं, कोई किसी से बैठ नहीं। बैठत मन भावत जाके, जिसको जहां इच्छा होती थी बैठता था, उसको कोई बोलता नहीं था कि हमारा डेरा है तुम भागो। खेलत हंसत करत कौतूहल, खेल कर रहे थे, हंस रहे थे, कौतूहल कर रहे थे। जुड़े लोग जहां तहां अकुहल, जहां तहां कोलाहल हो रहा है दूल्हे। नंद कहो सब भोग मंगावहू, अपने कर सब लय लय आवहू। भोग जो है उतार उतार करके बैलगाड़ी से सब लाओ, तो सब अपने हाथ से सब लाओ। सूर्य श्याम सब आयुष, जब आयुष दिन हो, दीप्र बुलाई नंद तब लीन। सूरदास के प्रभु भगवान कृष्ण ने जब आज्ञा दिया कि अब जग चालू किया जाए, तो नंद महाराज सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाए जग करने के लिए। तुरंत तहा सब विप्र बुलाए, यज्ञारंभ तहा करवाए। ब्राह्मणों को बुलाए और यज्ञ प्रारंभ करवाए। साम वेद द्विज गान करत तह देखत सुर बिथके अंबर में। साम वेद का गान होने लगा, उच्चारण ब्राह्मण करने लगे, संस्कृत का श्लोक गाने लगे, देवता लोग आकाश में देख करके एकदम स्तंभित हो गए कि इतना सुंदर गान है, इतना सुंदर यज्ञ हो रहा है। आकाश में जहां तहां ठिठके रह गए। सूर्यपुत्र पूजा तब ही मिटाई। जब प्रारंभ हुआ तो वेद के मंत्र पढ़े जा रहे थे, संकल्प नंद बाबा ले रहे थे यज्ञ करने का, तो संकल्प और गिरिराज गोवर्धन का होने लगा, तो अब इंद्र की पूजा खत्म। तो पहले से ही था लेकिन वास्तव में एक फॉर्मल संकल्प होने लगा। सूर्यपति पूजा तब ही मिटाई, गिरि गोवर्धन तिलक चढ़ाई, और गिरि गोवर्धन जी को तिलक दिया गया, उनकी पूजा चालू हुई। कान कहे गिरि दूध अनाव, तब कृष्ण ने कहा गिरिराज जी को पहले दूध से स्नान कराए, दूध चढ़ाइए, सब अपने अपने घर का दूध दो, दूध चढ़ाओगे तो दूध बढ़ेगा, गौएं बढ़ेगी, गिरिराज जी आशीर्वाद देंगे, तो सब लोग दूध चढ़ाने लगे। कान कहो गिरि दूध अनावम, अनाव मैंने स्नान कराइए, बड़े देवता ही नहीं मना, ये बड़े देवता हैं, सबसे बड़े हैं, इनको प्रणाम करो, इनके आशीर्वाद मांगो। गोवर्धन दूधई अनवाए, देवराज कहीं माथ नवाए। गोवर्धन जी देवराज हैं, समस्त देवताओं में श्रेष्ठ हैं, यह कहकर के कृष्ण ने स्वयं प्रणाम किया और सबको कहा प्रणाम करो प्रणाम करो। गिरिराज जी को भगवान प्रणाम करे और स्वयं भी गिरिराज बने हुए हैं, आगे बात आएगी। नयो देवता कान्ह पूजावत, नर नारी सब देखन आवत, सभी उत्सुक थे और सब जगह हल्ला था ब्रज में, कृष्ण नया देवता पूजवा रहे हैं, नया देवता पूजवा रहे हैं। नयो देवता कान पूजावत, नरनारी सब देखने आवत, सूर श्याम गोवर्धन थापो, इंद्र देख ऋषि कीर्तन काप। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम ने गोवर्धन के स्थापना के मैंने बड़े देवता के रूप में इसको देख करके इंद्र क्रोध से कांपने लगे। देखने आए होंगे चाहे सुनने होंगे, क्या किए होंगे। दूसरे पद में श्याम कहो सब भोजन लावहू, गिरी आगे सब आनी धरावहू, सारा भोजन लाइए और गिरिराज जी को परोसिए, आगे कीजिए। सब बड़े बड़े बर्तनों में सब रखा जा रहा था, वो कल्पना नहीं की जा सकती कितने बर्तन कितने घड़े सब जुटे थे और सब भोग लगाया गया। वही परंपरा आज है 56 भोग की, तो भक्तजन आज भी भगवान के उस लीला की याद करते हैं, ठाकुर जी को 56 भोग लगाते हैं, सजाते हैं, करते हैं। ये तो गिनने के लिए केवल रहता है, 56 भोग किसी को मिल नहीं पाता है। एक बार मायापुर में कई तरह के प्रसाद वितरित हो रहे थे, बेचे जा रहे थे, तो एक भक्त हमसे कहता है महाराज यदि लिट्टी चोखा यहां बेचा जाए तो भी बहुत लोग खरीदेंगे। कह रहे क्या कर रहे हैं, लिट्टी चोखा मकुनी का आगे इससे अगर बेचा जाए तो ये विदेशी लोग बहुत खरीदेंगे। मायापुर में आकर के भी यही खरीद बिक्री सोच रहे हो, कीर्तन करो कीर्तन करो, मतलब नहीं है नया आइटम होगा उनके लिए, लेकिन इससे क्या है, दूसरे लोग बनाने बेचे तुम मत बनाओ, तुम मत सोचो ऐसे व्यापार, मत सोचो वृंदावन सब भगवान के धाम है, वहां पर भजन करना चाहिए, नहीं कि हमको किसी चीज से पैसा मिले तो वही काम करें वही काम। फिर किया नहीं लेकिन तैयारी में था। लिट्टी चोखा दो। तो श्याम ने कहा कि सब भोजन लाइए सुनत नंद तह ग्वाल बुलाए, भोग सामग्री सबय मंगाए। सुन करके नंद बाबा ग्वालों को बुलाए कि लाओ बड़े बड़े शरीर वाले भारी भारी पहलवान और सब, सतरस की बहुभांति मिठाई, सब प्रकार के रस का भोजन था, बहुत प्रकार की मिठाई थी, अन्य भोग अति ही बहुत आई और अन्य जो भोग था बहुत ज्यादा थी, व्यंजन बहुत भांति पहुंचाए और अनेक प्रकार की सब्जियां, दधिलवनी मधुमाट धराए और दही नवनीत और मधु के माट माने बर्तन घड़े सब बड़े बड़े माटे घड़े को ही नहीं बड़े चरुई कहते हैं धराए। दही बड़ा बहुत परुसाए, दही बड़ा बहुत रखे है, चंद्र ही की पट तरते पाए, क्या है समझ रहे, चंद्रमा जैसे चमक रहे थे, क्या अन्नकूट जैसे गोवर्धन, अन्न का ऐसा शिखर बन गया जैसे गोवर्धन जी हैं, कूट मैंने शिखर, अन्न का ऐसा शिखर बना जैसे गोवर्धन जी, कूट मैंने शिखर, अन्न का कूट, ये सब प्रसाद जो रखेगा भोग रखेगा गोवर्धन जी को, ये सब पर्वत के शिखर जैसा होगा, इसीलिए इसको अन्नकूट कहते हैं। अन्नकूट जैसे गोवर्धन और पकवान भरे बहु कोदन चहुकोदन, चारों ओर सब पकवान भरे थे, परुषत भोजन प्रातहिते सब, सवेरे से ही भोजन जुटा रहे हैं लगा रहे हैं, एक खेप में नहीं पूरा हुआ, केवल लाओ रखो लाओ रखो, परुषत भोजन प्रातः ही से सब रवि माथे ते धरक गयो, ये परोसते परोसते सूर्य दोपहर के बाद पश्चिम हो गए, माथा से धरक गए, मतलब माथे पर थे जब प्रातः काल उगे तब से भोजन परसा जा रहा, भोजन लगाते लगाते परोसते परोसते सब सजाते 12 से ज्यादा हो गया, मतलब एक बच गया, रवि गयो रवि माथे थे घर धरक ही गयो, गोपन कहो श्याम यहां आवहू, भोग धरो सब गिरी ही जमा बहू, ग्वालों को कहे सब भोग रखो और गिरिराज भोग खा लिए, गुरी जेवा सूर श्याम आपुन ही भोगी, आपू ही माया आपू ही जोगी। वास्तविक बात है कि वो खाने खाना है कृष्ण को ही, कृष्ण ही खाए पर्वत बन करके, आपू ही माया आपू ही जोगी एक कहावत है, आपू ही माया आपू ही जोगी, जोगी माया से छूटना चाहता है पार होना चाहता है, लेकिन आपू ही माया आपू ही जोगी, वहां पर स्वयं पुजारी भी वही है और पूज्य भी वही है, देवता भी वही है, भोग वही खा रहे हैं, खिवा रहे हैं, ला रहे हैं, सारा वही खाए, श्याम सुंदर भी खाए। कान कहो नंद भोग लगाव, पिताजी कहे कि अब आप भोग लगाइए गिरिराज जी को, गोप महर उपनंद बुलाव, उपनाम आदि गोपों को बुलाए, नैन मुंद कर जोरी मनावहू, भगवान ने कहा है कि नैन मुंद करके हाथ जोड़ करके गिरिराज जी से मांगिए, प्रेम सहित देवही सु चढ़ावहू, भगवान को अर्पण करो देवता को और स्मरण करो, मन में नेक खुटक जनी राखहू, कोई खुटक मत रखिए, अविश्वास मत रखिए, अश्रद्धा नहीं, एकदम खुले दिल